ओम शांति, ओम शांति। क्या हुआ सुबह सुबह? थोड़ी एनर्जी वाली आवाज आनी चाहिए ना। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज के ग्राम विकास प्रभाग के अंतर्गत भारत सनातन संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज्य इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं ब्रह्मा कुमार ब्रता राजेश दवे जी, उनसे अनुरोध कर रही हूँ कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रह्मा कुमार ब्रता महर्षि दवे जी, आपसे भी अनुरोध कर रहे हैं कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रह्मा कुमार भगवान भाई जी, आप भी कृपया स्टेज पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। अभी हम सभी कार्यक्रम की शुरुआत 2 मिनट परमात्म स्मृति के साथ करेंगे। हमारे बीच आदरणीय राजयोगिनी सुनंदा दीदी जी आ गए हैं, आपसे भी अनुरोध करेंगे कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। भ्राता विनोद भाई जी से अनुरोध कर रही हूँ कृपया स्टेज पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार
दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है, ये मेरा है वो तेरा है यही सोचना भूल है,
यही सोचना भूल है।
ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए, नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए,
ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए।
इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है।
सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है,
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार।
ओम शांति। भ्राता डॉक्टर देव सिंह जी अगर यहाँ बैठे हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, भारत भूमि सदियों से देव भूमि रही है और उनके आगमन में उनके स्वागत के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि हमारे आए हुए अतिथियों का बैजिस के द्वारा स्वागत करेंगी। ब्रह्मा कुमारी बहनें, बहुत सुंदर तुलसी का वृक्ष, एक वृक्ष सौ पुत्र समान, हम सब स्वागत में पुष्पों को तो देते ही हैं, लेकिन अगर वृक्ष को दें और साथ साथ उनकी बहुत सुंदर हम पालना करें तो हम सब के लिए ये जीवन यापन का, हम सबके जीवन में बहुत सुंदर इनका रोल होता है। विनोद लाहौरी जी को आप सभी अपनी तालियों का सहयोग हमें जरूर देंगे। तालियां वो नहीं बजाते जिनके पास कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते जिनके पास कोई गम होता है, तालियां वही बजाते जिनके हाथों में दम होता है। इसलिए जोरदार तालियों से हम सभी अतिथियों का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। आज का जो हमारा मुख्य विषय है, आत्मनिर्भरता के लिए मूल्यनिष्ठ किसान संगठन। किसान अगर मजबूत है, किसानों का संगठन मजबूत है, किसान अगर मजबूत है, किसान अगर आत्मनिर्भर है, हमारा देश आत्मनिर्भर है। इसी विषय पर मैं ब्रह्मा कुमार राजेश दबे भाई जी से अनुरोध करूंगी कि वह इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। भ्राता राजेश दबे जी और भ्राता महर्षि दबे जी, बहुत सुंदर यह कॉम्बिनेशन है पिता और पुत्र का। लौकिक में भी आप पिता पुत्र हैं और वैसे साथ चलने में भी। भ्राता एसपी चौधरी जी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। भ्राता राजेश दबे जी इंडो जर्मन वाटरशेड के चीफ रहे हैं। कृषि एवं ग्राम उत्थान के लिए आपने 35 सालों से अपनी सेवाएं दी हैं। देश और विदेशों में कृषि की यौगिक खेती के लिए आप ट्रेनर भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनो में भी स्पीकर के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी हैं। आप रिटायरमेंट के बाद फॉर्म ब्रिज के को फाउंडर हैं। CSR के लिए पूरे भारत में आप सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही आप पूर्व DGM नावार्ड बैंक मुंबई से आपने बहुत सारी सेवाएं दी हैं और आप रिटायरमेंट के बाद में आप अभी भी बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं। साथ साथ हमारे भाई महर्षि दबे जी, आपने भी इंजीनियरिंग की शिक्षा के पश्चात पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट किया हुआ है। आप डायरेक्टर कम CEO फॉर्म ब्रिज गुजरात से हैं और किसानों के सशक्तिकरण के लिए CSR के माध्यम से आपने 150 से भी ज्यादा गांव और भारत के 7 राज्यों में अपनी सेवाएं दी हैं। आप जलवायु परिवर्तन के एक्सपर्ट भी हैं। दो शब्द आपके लिए हम कहना चाहते हैं कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, शीशे के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत और लगन से हासिल होती है सफलता, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। ऐसी मेहनत और लगन से आप दोनों ही गांव को, किसानों को सशक्त करने के लिए रात दिन अथक सेवाएं दे रहे हैं, हमारे भाई राजेश दबे जी और भाई महर्षि दबे जी।
ओम शांति। आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत है। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रद्धेय ब्रह्मा कुमारी सुनंदा दीदी जी, श्री चौधरी साहब, डॉक्टर विनोद जी, डॉक्टर देव जी, हमारे भ्राता भगवान भाई, आदरणीय दीदी जी, सभी लोगों का जो मंच पर और सामने उपस्थित है, विशेष स्वागत है। आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि एक साथ दो स्पीकर्स, लेकिन बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पॉइंट्स और बातें होती है जो एक दूसरों के साथ शेयर करके हम इस सेशन की, आपकी जर्नी को, आपकी इस यात्रा को एक विशेष कर एक्सेलेंट रूप में और बहुत कुछ फलदायी साबित करना चाहते हैं। संक्षिप्त में, संगठन ही सभी समस्याओं का समाधान है। आपने यहां भलीभांति महसूस किया होगा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संगठन कैसे बहन और भाई मिलकर पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। तो ये संगठन शक्ति है। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को पूछा जाता है कि आने वाला समय तो बहुत खराब है, द्वापर के बाद कलयुग, हम इसमें जो सज्जन लोग हैं, छोटे मध्यम लोग हैं, वो कैसे जी सकते हैं? बोले कलयुग है संगम शक्ति। तो संगम शक्ति का टॉपिक और उसमें भी किसान, उसको लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए। संगठन अगर मजबूत है तो हर समस्या का समाधान, हर वो परिवर्तन की बातों को वो लागू कर सकता है। तो आइए चलते हैं इस सेशन में। जी,
ओम शांति। आज का जो हमारा सेशन है वो आपको एक बहुत ही खूबसूरत 30 मिनट की यात्रा पे हम आपको ले जाना चाहेंगे, जहां पे आज का जो हमारा मुख्य थीम है आज के सेशन का, वो है आत्मनिर्भरता के लिए मूल्यनिष्ठ किसान संगठन। तो हमने जो हमारे लौकिक कार्य में जो हमने किसान संगठन बनाए हैं, हम कुल टोटल 9 राज्यों में काम करते हैं, वहां पे हमने अलग अलग जगहों पे जो किसान संगठन बनाए हैं, तो हमने कौन से ऐसे मूल्य खुद देखे कि उस मूल्य के इंजेक्शन से, उस मूल्यों के इन्फ्यूजन से जब किसान संगठन में वो मूल्य हम इनकलकेट करते हैं, तो उसकी वजह से किसान संगठन कितने स्मूथली और कितने बड़े बड़े कार्य बहुत ही आसानी से कर देते हैं, उसकी एक केस स्टडी और उसकी एक कुछ झलके जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम बहुत ही सौभाग्य है कि आप सब ये ज्ञान सरोवर के परिसर में आए हैं, और यहाँ पे जो हम आपको केस स्टडी दिखाएंगे वो हमारी जो संस्था है फार्म ब्रिज, जो आप स्क्रीन पे अभी पीपीटी दिखा सकते हैं। जी, तो फार्म ब्रिज और हमारे साथ जो हमारे कॉरपोरेट पार्टनर है उनमें से कुछ हमारे ऑडियंस में मौजूद है, और हमारी फील्ड टीम जो यहाँ ऑडियंस में मौजूद है, हमने बहुत ही अथक परिश्रम करके हमने बहुत सारे किसानों संगठन बनाए हैं, और हमने ना ही सिर्फ लोकल मार्केट्स में पर वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट भी किया है। पर ये एक जो हम आपको प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उसका शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हम संगठन की बात करते हैं तो संगठन में आप जो बहुत सब एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए हैं, एफपीओ से भी आप आते होंगे, आपने खुद एफपीओ दर्ज किए होंगे, हमारे मंच पे भी एफपीओ के जो मुख्य कर्ता धरता है वो भी आए हुए हैं, तो जब भी हम संगठन का नाम सुनते हैं तो सबके दिमाग में सबसे पहले एक एफपीओ आता है या एफपीसी आता है, या फिर कोई कोऑपरेटिव, बहुत बड़ी कोऑपरेटिव हो जैसे अमूल है या शुगर इंडस्ट्रीज है, वो सब आते हैं। पर हम आपको आज ये दिखाएंगे कि संगठन बड़ा होने की जरूरत नहीं है, अगर मूल्यवान संगठन हो तो एक गांव में 15 किसानों का भी संगठन क्या कर सकता है और कैसे अपने किसान अपनी कृषि को बेहतर कर सकते हैं, वो भी हम आज आपको केस स्टडीज दिखाएंगे। तो बहुत ज्यादा देरी ना करते हुए, मंच पे बहुत सारे महानुभाव है, सबको सुनना है, तो हम ये यात्रा पे आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत में बस मैं एक मिनट लूंगा, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम क्या है और क्या करते हैं उसके बारे में। तो फार्म ब्रिज सोशल सपोर्ट फाउंडेशन एक सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी है, और हम मुख्य जो हमारा कार्य है वो हम सीएसआर के माध्यम से, हम मुख्य ये जो चार आप जो देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन हेल्थ और यूथ स्किल डेवलपमेंट पे हम काम करते हैं, और हम 2015 से, मतलब ऑलमोस्ट अब 10 साल हो गए हमारी स्थापना हुए हुए, और हम टोटल 9 राज्यों में काम कर रहे हैं, और ये सारी जो संस्थाएं हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हम जुड़े हुए हैं, और टोटल हम 9 राज्यों में काम कर रहे हैं अलग अलग कॉरपोरेट के साथ, और टोटली हम जो है किसान संगठन बनाना और एग्रीकल्चर टेक्निकल सर्विसेज देना किसानों को, और संगठन बना के उनको अपना जो उत्पादन है उसका जो प्रॉपर मोल रियलाइज करवाना, उस पर हमारा कार्य जो है बहुत ज्यादा निर्भर रहता है। ये कुछ ब्रांड्स है किसानों की जो हमने खड़ी करी है, निमित्त बने हैं खड़ी करने के लिए हमारे कॉरपोरेट पार्टनर के साथ, और आप देख सकते हैं मिलेट से लेके, धान से लेके, चना है, हल्दी है, बहुत सारी चीजों में हमने किसानों को निमित्त हम बने हैं कि किसान खुद की ब्रांड खड़ी करे, खुद उसमें वैल्यू एडिशन करे और अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उससे ज्यादा मोल और ज्यादा वैल्यू रियलाइज कर पाए।
तो वैसे देखा जाए तो मूल्यनिष्ठ संगठन क्योंकि ये जीवन ही उसके ऊपर निर्भर है। आप यहाँ महसूस कर रहे होंगे कि जीवन में मूल्य है तो सब कुछ है, और मूल्यनिष्ठ अगर संगठन बन जाए तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन मूल्यनिष्ठ कुछ सिद्धांत के आधार पर निर्भर होता है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो वैल्यू सिस्टम है, वो है ईमानदारी और विश्वास। हम सभी जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक स्लोगन दिया जब वो फर्स्ट टाइम बने प्राइम मिनिस्टर, तो कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन उनको लगा कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो फिर उन्होंने उसमें ऐड किया। कोई कह सकता है क्या ऐड किया? सबका विश्वास। लेकिन विश्वास ऐड करने के बाद भी उनको लगा कि अभी भी कुछ कमी है, तो फिर प्रयास। तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तब जाके होता है सबका विकास। प्रयास एक्शन है, और सबका साथ रहना संगठन है। लेकिन संगठन तभी बन सकता है जब थॉट प्रोसेस हार्मोनाइज होती है, एकात्मतावाद होता है। और ये चीज लाना, क्योंकि अभी सुबह सुबह मैं देख रहा था कि आपसी भाईचारा, सद्भावना, विश्वास, ये कोई मंडियों में मिलने की चीज नहीं है। लेकिन आप जहां पधारे हैं, ये मंडी तो नहीं, लेकिन ऐसा स्थान है जहां पे आप इसको भर भर के लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये मूल्य है, और ये मूल्य ही सब कुछ हमें देते हैं। साथ साथ में ये किसान संगठन है, उसमें समानता और सम्मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं नाबार्ड में रहा, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ज्यादातर तकलीफें कुछ त्रुटियों की वजह से आती है। जैसे ईगो होता है, जलसी होती है, ऊंच नीच का भाव होता है, तो उसको नलिफाई करते हैं, तब हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इक्वालिटी और रिस्पेक्ट हरेक को देना चाहिए, छोटा हो या बड़ा, तब संगठन बढ़िया बनता है। और किसान के हक के लिए जो संगठन लड़ता है, उसमें सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच नहीं हो, और बेहतर कृषि व्यवस्था संगठन के तौर पे ही बन सकती है। तो ये मूल्यनिष्ठ संगठन जो है वो कैसे काम करते हैं और कैसे हमने शेप दिया, आप आगे भी देखेंगे। यू विल टेक अप।
ये कुल हमने 7 मूल्य जो हमने आइडेंटिफाई किए थे, और हमारी जो मंथली मीटिंग्स होती है किसान संगठन के द्वारा, तो ये 7 मूल्यों पे हमने बहुत जोर दिया। क्योंकि आपको पता है कि कभी भी कोई भी इमारत जो होती है वो तभी टिक सकती है जब उसका फाउंडेशन, उनकी नींव मजबूत हो। तो ये 7 मूल्य हमें लगे कि ये बहुत ही ज्यादा नींव मजबूत करने वाले मूल्य, अगर ये मूल्य मजबूत रहे तो कोई भी किसान संगठन, चाहे वो छोटा सा किसान संगठन हो या बड़ा FPO हो, सबकी नींव अगर मजबूत होगी तो ये इन मूल्यों को मजबूत करने से ही होगी। तो ये 7 मूल्य है।
तो उसमें से जैसे आपको कल सुबह यहां से एक आध्यात्मिक सेशन मिला, लेसन मिला, वो था आत्मा। हम सभी कौन है? वो एक ऊर्जा है, आत्मा है, और हमारे अंदर निजी गुण कौन से हैं? 7, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, है ना, अन शक्ति। ऐसे ही ये 7 गुण है जो संगठन के लिए लागू होने होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है स्वाभिमान। जब तक सेल्फ एस्टीम यानी स्वमान किसी का ऊंचा नहीं होता है, तब तक संगठन में वो इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी का भी जब सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम डाउन हो गया, तो उन्होंने राम के लिए भी लंका तक जाने के लिए अपना हाथ ऊंचा नहीं किया था। लेकिन जब जांबुवन जी ने उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ाया, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान बढ़ाया, तब उन्होंने वो जो असंभव सा कार्य लग रहा था वो किया। तो हमारा किसान भी ऐसा ही है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में उनको स्वायत्तता देना बहुत ऑटोनॉमी, क्योंकि ऑटोनॉमस बहुत ही अच्छा शब्द है। अगर किसी भी आत्मा के पास ये अपने संगठन का ओनरशिप, अभी कल हम यहाँ के गांव में गए थे, आपको खुशी होगी कि कोई भी चीज किसी को मुफ्त में नहीं देनी चाहिए। तभी वो ओनरशिप में आता है जब उसका खुद का उसमें काफी कंट्रीब्यूशन रहता है, और उसके लिए तब उसको फील होना चाहिए कि ये संगठन का मालिक मैं भी हूं। और जब वो ओनरशिप आती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इक्वालिटी का भी उतना ही महत्व है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर एक को स्थान मिले। विश्वास और ईमानदारी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंजन के रूप में उसको आगे ले जाने के लिए। कोऑपरेशन, उसको भी आप सब जानते हैं कि सहयोग के बिना गोवर्धन पर्वत नहीं उठाया गया। भगवान ने बोला आपकी सबकी उंगली लगनी चाहिए, तो सहयोग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ में आप देख रहे हैं कि जनहित के निर्णय अगर संगठन में आता है, सबके, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। हम आपको अभी एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें ट्राइबल विडो लेडी एक संगठन से जुड़ी है, ऐसी बहुत अनेक विधवाएं जिसके पास एक दो बीघा जमीन है, वो बहुत अच्छा करती है। उसके खेत में भी हम गए, वो टिश्यू कल्चर अपना चुकी है, उसके पास ड्रिप इरिगेशन है। क्यों? क्योंकि वो संगठन से जुड़ी है, तो वो जनहित के निर्णय वो संगठन ने लिए तब ये संभव हो सका। और उसी तरह इनोवेशन, तकनीक और लॉजिस्टिक्स को नवीनीकरण में लाकर ये काम किया जा सकता है। तो ये सात चीज है, उसके ऊपर हम आपको बताएंगे। यस,
अब ये जो सात गुण हमने मूल्य जो है जिसको हाईलाइट किया है, वो हमारी फार्मर्स क्लब्स की, फार्मर्स क्लस्टर्स की केस स्टडी हर एक मूल्यों से हम आपको लिंक करके एक बहुत ही एक खूबसूरत यात्रा पे ले चलते हैं। तो सबसे पहला जो था स्वाभिमान, जिसको हम एक स्वमान भी कह सकते हैं, उसका जो एक पर्याय है स्वमान। तो अगर किसी किसान का या संगठन का, हमें उनको एक बहुत ही अच्छी राह पे मार्केटिंग की, स्पेशली मार्केटिंग, चाहे वो B2B मार्केटिंग हो, B2C मार्केटिंग हो, D2C मार्केटिंग हो, हम अगर चाहते हैं कि वो अपने उत्पादन का, जो वो मेहनत कर रहे हैं, उसका सही मोल रियलाइज करें, तो सबसे पहला जो मूल्य है जिसको हमें हिट करना है, वो है उनका स्वमान जगाना। जैसे साहब ने अभी कहा कि हनुमान जी का भी उनको सिर्फ जांबुवन ने मोटिवेशन नहीं दिया था, उनका स्वमान जगाया था, तब जाके वो अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो ताकत है, अपना जो पावर है, वो रियलाइज कर पाए। वैसे ही हम, हमारे जो किसान संगठनों की मीटिंग होती है, उसमें हम सबसे पहले तो उनको उनका स्वमान जगाते हैं। कैसे उनका स्वमान जगाते हैं कि हम उनको ये बताते हैं, आप जितने भी लोग यहां पे बिजनेस कर रहे हैं भारत में या कहीं बाहर के देशों में, जो कोई भी एक चीज बना रहा है, चाहे वो एक रुपए का शैंपू का पाउच हो, या 90,000 एक लाख रुपए की मोटरसाइकिल हो, या 10 लाख रुपए की गाड़ी हो, उसका दाम कौन तय करता है? जो उसको मैन्युफैक्चर करता है, जो उसको बनाता है, वही उनका दाम तय करता है। पर जब हम, हमारी बनाई हुई चीज, किसान जब वो धान, गेहूं, जो भी वो 4 महीने 5 महीने, जैसे कपास है तो 8 महीने, खुद का बनाया हुआ मैन्युफैक्चर्ड जो माल है, वो जब मार्केट में ले जाते हैं, तो दाम तय कौन करता है? जो खरीदने वाला है। तो हम किसानों को ये कहते हैं कि आप एक छोटी सी एक स्विच भी, इलेक्ट्रिक की स्विच भी लेने जाएंगे, तो सामने वाला आपको दाम बताएगा, पर जब आप अपना बनाया हुआ माल ले जाएंगे, तो भी कितने रुपए में बिकेगा वो भी सामने वाला बता रहा है। तो अगर ये पावर आपको, अपना खुद ये पावर जनरेट करना है, तो हमें संगठन में आना पड़ेगा। और एक ही चीज हमें ज्यादा करनी है, वो क्या चीज करनी है कि सपोज हम एक एग्जाम्पल में लेता हूं, धान की खेती जनरली उसकी नर्सरी पैदा करने के बाद हार्वेस्ट तक का वो तकरीबन 120-130 दिन का जो समय होता है। तो पूरे भारत देश में एक भी ऐसा किसान नहीं होगा जो अपने धान की फसल को एक सगे बेटे की तरह रखे वाली नहीं करता होगा, राइट फ्रॉम अच्छे बीज से लेके, नर्सरी से लेके, वीडिंग, खेत तैयार करना, फर्टिलाइजर्स, और तो और रात को जाग जाग के जंगली जानवरों से बचाना, ये सारी चीजें जो है किसान अपने फसल को एक सगे बेटे की तरह ट्रीट करता है। पर जैसे वो फसल कटी, वो बिल्कुल पराई हो जाती है किसान के लिए। वो एकदम सौतेला व्यवहार करता है। बहुत सारे किसान तो अपने घर पे भी नहीं लाते, सीधा अपने खेत से ही डील करके वो बेच देते हैं। पर वो क्योंकि वो संगठन में नहीं है, अकेले है, तो उनका शोषण बहुत होता है, एक्सप्लोटेशन होता है। अच्छा प्राइस ना मिलने के बावजूद भी हाथ बंधे हुए हैं, तो उनको जो प्राइस मिल रहा है उस पर वो बेच देना पड़ता है। तो हमने हमारे किसानों को समझाया कि आप एक काम करिए, आपने 120 दिन या 130 दिन दिए हैं, उसके सिर्फ 15% और समय इस फसल के साथ आप काम करिए जो कटी है। मतलब और 15 से 20 दिन अगर आप काम करेंगे, आपने ऑलरेडी 120 दिन तो दे दिए हैं, पर आपकी फसल अगर वैल्यू एडिशन करके आप खुद उसको अगर सेल करेंगे या संगठन में सेल करेंगे, तो उससे आपको डबल जो है प्राइस रियलाइजेशन होगा। और ये जब उनका सम्मान जगाया, ये जब बहुत ही लॉजिकली उनको समझाया, तो बहुत सारे ऐसे किसान थे जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, जो लेफ्ट में जो आप फोटो देख पा रहे हैं, वो हमारे चित्तौड़गढ़ के किसान हैं। गांव का नाम है बनाकिया कला। बनाकिया कला के लक्ष्मण जी है, उन्होंने अपनी चने की जो पैदावार है उसका ग्रेडिंग करके, पैकिंग करके, कॉरपोरेट की मदद से हमने उनको सारा पैकेजिंग मटेरियल दिया, और अभी वो जो चने का भाव जनरली मेरे ख्याल से 80 से 90 रुपए प्रति किलो होलसेल का था, उसकी जगह वो 120, 130 और 150 रुपए में भी वो बेच रहे हैं। तो वो अपने जो आमदनी है उनकी डबल हो गई। वैसे ही आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड जो ऊपर जो फोटो है, वो किसान पहली बार उन्होंने सौंफ की खेती करी, और सौंफ की भी हमने ग्रेडिंग करके उनको पैकेजिंग करवाई, अपने घर में पैकेजिंग कर रहे हैं। अगर वो चाहते तो महसाणा में उंजा मार्केट में अपना पूरा माल वो एक साथ बेच सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनका सम्मान जागा और वो घर पे थोड़ी और मेहनत करके उसके एक एक किलो, आधा आधा किलो पैकेट करके बहुत ही अच्छा दाम जो है रियलाइज कर रहे हैं। उसके नीचे आप देखेंगे, आप सबने पावागढ़ का नाम सुना होगा। पावागढ़ में हमारे ये आदिवासी किसान हैं, वो जो मूंग की खेती कर रहे हैं, मूंग की खेती का पैकेजिंग करके खुद के ही पिकअप में या भाड़े पे पिकअप ले जाके किसी मंदिर का पार्किंग है या जहां पे ज्यादा लोग आते हो शहर के, वहां पे वो पूरा दिन खड़े रहते हैं और अपना जो प्रोड्यूस है वो बेचते हैं। तो वो जो मूंग का कीमत जो उनको 80 रुपए मिलने वाला था, उसकी जगह वो 120 150 रुपए में भी ये यहां पे बेचते हैं। तो ये है संगठन की ताकत। और इनको देख के अब धीरे धीरे, ऐसे तो हमारे बहुत सारे किसान हैं जो चावल बेचते हैं, बाजरा बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं डायरेक्टली कस्टमर को ही शहरों में, और अब शहर के जो कस्टमर है उनको जानने लगे, तो उनको फोन करके वो डायरेक्टली D2C मार्केटिंग पे अब जुड़ गए हैं। तो जब हम सम्मान ऊंचा करते हैं किसान का, तो किसान की जब वो अंदर की ताकत पहचानता है, तो ऐसे हमें जादू रिजल्ट मिलता है। अब नेक्स्ट जो हमारा मूल्य था वो था स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। किसान संगठन का हमें, अगर हम बहुत ही अच्छा एक फ्रेटर्निटी, एक भाईचारा बढ़ा दे, तो वो अपने आप ही अपना डिसीजन जो है वो ऑटोनॉमस लेने लगता है। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, सबसे पहला फोटोग्राफ लेफ्ट में, वो हमारे एक गांव है लीलोरा करके, जो हम एलेम्बिक CSR फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। एलेम्बिक बहुत बड़ी कंपनी है बड़ौदा में, और उसके प्रतिनिधि भी हमारे गेस्ट बन के ये इवेंट में आए हुए हैं। तो वो लीलोरा गांव के, आप मानेंगे नहीं, पर एक साथ दो गांव लीलोरा और जरोद ने मिलकर, संगठन ने 8000 क्विंटल धान का डायरेक्ट B2B मार्केटिंग एक मिल के साथ किया। जो पहले सारे किसान अलग अलग बेचते थे, कहीं पे कोई एक व्यापारी को बेचता था, कोई कोई दूसरे व्यापारी को बेचता था, अल्टीमेटली जाता तो वो सेम मिल में ही था। तो हमने जब यहां पे मंथली मीटिंग करी और उनके बीच में भाईचारा और थोड़ा सा पावर उनके हाथ में दिया, ऑटोनोमस किया, तो आप नीचे का जो फोटो है, लेफ्ट हैंड साइड नीचे जो फोटो है, वो मिल वाले के साथ मीटिंग का वो फोटो है। तो हमने जो प्रतिनिधि बनाए थे किसान संगठनों के, वो डायरेक्ट मिल में गए और उन्होंने ये डील किया, और एक साथ 8000 क्विंटल दो गांव ने मिलकर वहां पे डील किया। और ऐसा भी हुआ, जब उन्होंने हमने बहुत मेहनत करी ये मिल वाले के साथ उनको डील करवाने पर, किसानों को लगा कि साहब दूसरा कोई हमें और अच्छा दाम दे रहा है। ये मिल वाला बोल रहा है कि मैं 480 रुपए 20 किलो का भाव आपके खेत से उठाऊंगा, पर वहां पे हमें 490 मिल रहा है। तो हमने उनको कहा, आप जो है वो फ्री है अपना डिसीजन लेने के लिए, ऑटोनॉमी हमने उनको दी, और उन्होंने फिर उनके साथ डील करी। जो राइट हैंड साइड आप फोटो देख रहे हैं, वो है, हमने ऑनलाइन मीटिंग हमारी एक चल रही है हमारे भरूच के किसानों की, जलगांव के कुछ पल्सिस के व्यापारी के साथ। तो आप सोचिए कि हमारे किसान, जब हम ऐसा संगठन बनाते हैं और हम उनको पावर देते हैं, तो वो लोग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके, ना ही सिर्फ जलगांव जाना है, पोस्ट के द्वारा सब भिजवा दिया उनका सैंपल्स मोटका और मूंग का, और डायरेक्टली वो अभी ऑनलाइन मीटिंग करके दाम तय करते हैं। दाम अच्छा नहीं लगा तो डील नहीं भी करते, दाम अच्छा लगा तो फिर वो डील करते हैं। तो ये हमारा तीसरा जो हमारा गुण था वो है समानता।
क्योंकि संगठन में जब तक ये मूल्य नहीं है तो बहुत तकलीफें आती है। बड़ी बड़ी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये कहती है कि बहुत सारे असाइनमेंट हमें मिल रहे हैं, कि कुछ किसानों के संगठन टूट गए, डिफंक्ट हो गए, उसको जिंदा करना है। क्यों डिफंक्ट हुए, उसकी वजह ये जो लड्डू बन रहा है, जो फोटो में आप देख रहे हैं स्लाइड में, वो है। आप सभी जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये दो चीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, और उसी वजह से निराशा और निष्फलता मिलती है। यहां आप देख रहे हैं कि गांव में जो तकलीफें हैं कॉन्फ्लिक्ट की, उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी काफी है। हमारे पास 5 उंगलियां हैं, 5 अलग अलग है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब आपस में हमारे दीदियां बहुत हमें एम्पावर करती है। आप लोगों को खुशी होगी कि पिछले 25 सालों से मैं और मेरा परिवार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा हुआ है। जब हमको जीवन में परमात्मा शक्ति से, राजयोग के अभ्यास से, जब ये मूल्यनिष्ठ जीवन की प्रेरणा मिली, तो फिर उसकी वजह से बहुत सारी हमारी जो सफलता है उसका श्रेय जाता है ये राजयोग की विद्या और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को। तो हमने ये स्टोरी जानी और किसानों को कहना शुरू किया। 10,000 से ज्यादा किसानों से जुड़े हैं। तकलीफ मेनली यही होती है कि कोई अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, जैसे ये उंगली कहती है कि मैं सबसे महान, मेरी पूजा पहले होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे आजू बाजू में सुदर्शन चक्र घूमता है, चाहे माँ अम्बा हो या चाहे श्री कृष्ण हो, श्री विष्णु हो, इसलिए मेरी, आई एम द फर्स्ट। तो ये उंगली बोली, नहीं, तेरे से साइज में तो मैं बड़ी हूं, तो मैं तुमसे बड़ी हूं तो मेरी पूजा होनी चाहिए। इसने कहा कि जो भी शुभ मुहूर्त में मेरी यूज किया जाता है तिलक करने के लिए, तो मैं मान। इसने कहा कि गोवर्धन पर्वत तो मैंने उठाया था, तो मेरी पूजा होनी चाहिए। अंगूठा ने बोला कि अंगूठे के बिना तो कोई कर्तव्य हो ही नहीं सकता है, है? और आपकी लैंड रजिस्ट्री, कलेक्टर ऑफिस में जाएंगे, हर जगह ये तो चाहिए ही चाहिए। तो अब झगड़ा में क्या हुआ, हमारी दीदी जैसे कोई आए तो 5 ने बोला न्याय कीजिए, किसको देना है। तो फिर छोटी सी 200-500 ग्राम बूंदी मंगवाई खुली, और बोला जो सबसे पहले लड्डू बना के लाएगा वो महान। अब अकेले अकेले ट्राई करने से तो लड्डू बनेगा नहीं, इस उंगली से। तो फाइनली थक गए, तब बोला कि यही वजह है, आप 5 साथ में ट्राई कीजिए। गांव में यही तकलीफ है। वो सरपंच था एक्स, अभी ये सरपंच बना, वो उस परिवार से है, ये इस परिवार से, वो इस हेमलेट का है, ये इस हेमलेट का है, ये सब बहुत है। उसको मिनिमाइज करने के लिए लड्डू। तो जब अंदर से महसूस कर रहते हैं तब बहुत फर्क पड़ता है, और इसीलिए हर कोई समान है। ये उंगली अगर नहीं होती तो ये 4 से भी इतना अच्छा गोल लड्डू नहीं बनता। तो छोटे से छोटा और स्ट्रांग से स्ट्रांग, कमजोर से कमजोर, बड़े से बड़ा, सबको एक साथ आना है, वही है मूल्यनिष्ठ संगठन। नेक्स्ट,
ये जो 3 मूल्य हमने हाईलाइट किए हैं उसके ही रिगार्डिंग एक छोटा सा एक वीडियो है, कैसे हमारे किसान बहनों ने एक बहुत ही बढ़िया अपने अरहर में से दाल बना के वैल्यू एडिशन करके अपना जो उत्पादन है वो बेचा शहर में, और जो तब 70-80 रुपए की जो प्रति किलो अरहर का दाम था उसके जगह 150-180 रुपए किलो तक उन्होंने वो दाल पैकिंग करके बेची। पर उसकी एक खासियत थी, उसकी खासियत ये थी कि वो जितनी भी दाल बनी थी वो घर पे उन्होंने अपने हाथ की जो चक्की है उसमें पीस के बनाई थी, जो अब शहरों में अवेलेबल नहीं है। शहरों में तो सिर्फ पॉलिश दाल मिलती है, और उसकी वजह से इवन हमारे जिले का जो कलेक्टर है, जो कलेक्टर थे, उनको भी वो दाल, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था यूरिक एसिड का और एसिडिटी का, वो कलेक्टर को, तो ये जब दाल, और उनको दाल डॉक्टर ने मना कर दी थी कि आपको नहीं खाना है क्योंकि उसमें इतना प्रोटीन होता है, आप ज्यादा हलन चलन करते नहीं है तो यूरिक एसिड जमा हो जाता है। पर ये छिलकों की वजह से जो रह जाते हैं जॉन पॉलिश दाल की, उसकी वजह से उसका डाइजेस्टिव जो एंजाइम है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इवन हमारे बहनों की जब संगठन में आए और उनका प्रोडक्ट वो अच्छे से मार्केट कर पाए तो कलेक्टर एसडीएम लेवल तक भी उनका प्रोडक्ट जो है वो लिया जाता है, तो एक झलक हम आपको दिखाना चाहेंगे। प्ले करिए।
हम बहुत सालों से खेतों में तुअर उगा रहे थे। हम अपने घर में हाथ घंटी से ही दाल बना के परिवार को खिलाते हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं सभी लोग। शहरों में कुछ सालों से मशीन से गिराई हुई पॉलिश दाल खाने से बहुत सारी बीमारियां होती है, एसिडिटी और यूरिक एसिड जैसी बहुत सारी बीमारियां हो रही है। हमको आरटी कंपनी द्वारा ऐसी प्रेरणा दी गई कि आप घर पे दाल बनाओ और शहर वालों को घर की घंटी की दाल बना के खिलाओ। साहेबों की प्रेरणा के द्वारा हमको ऐसी माहिती मिली और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब शहरों वालों को भी हमारे गांव की घर की घंटी की दाल खिला सके।
हम बहुत सालों से वो तुअर की खेती कर रहे हैं, तो आरती के माध्यम से हम प्राकृतिक खेती की तरफ
बढ़। समय का थोड़ा अभाव होने के कारण आपको आधे आधे वीडियो दिखा के हम आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, कंटेंट है आपको पिरसने को और समय की थोड़ी मर्यादा है जी। नेक्स्ट जो मूल्य है वो है विश्वास और ईमानदारी।
विश्वास और ईमानदारी, ऑनेस्टी और ट्रस्ट। इस साल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का ये बहुत, आज विश्व में क्या तकलीफ है, ये दो ही कॉम्पोनेंट की कमी दिख रही है, विश्वास और ईमानदारी। किसानों में विश्वास और ईमानदारी लाने के लिए हमने कोशिश की और इतने फेमस हो गए। उसमें हमने हमारी दीदियों का, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों का सहयोग लिया, राजयोग की शिक्षा का सहयोग लिया और इतने अच्छे संगठन बने जो कि एनडीटीवी में मुकेश अंबानी जी के साथ और एयरटेल के मिस्टर मित्तल के साथ रिफ्लेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि आज एक 5 बीघा का किसान कॉरपोरेट के सामने कहां टिक सकता है, क्योंकि मुकेश अंबानी जी का गार्डन फ्रेश, रिलायंस फ्रेश ऐसे ब्रांड से हजारों एकड़ों में खेती है। मिस्टर मित्तल एयरटेल के फील्ड फ्रेश के साथ ब्रांड के साथ वॉलमार्ट से टाइप है, तो एक आम किसान क्या सोच सकता है। लेकिन संगठन एक ऐसा समाधान है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो ये बीच के जो दलाल है जो ज्यादातर प्रॉफिट ले जाते हैं, उसको कैसे मिनिमाइज करना, उनका भी जीवन है, उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन वो मिनिमाइज हो और जो रियल में मेहनत करता है उसको ज्यादा मिले। उसके लिए एक छोटी सी स्निपेट है, एनडीटीवी में 1-2 मिनट के वीडियो है, कैसे ये सक्सेस स्टोरी रिफ्लेक्ट हुई आप देखेंगे उसमें कि हाँ दिखाइए। तो अगर किसान संगठित रूप में आ सकता है तो वो एक कंपनी से कम नहीं है, आप देख लीजिए।
और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया।
नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रवीश कुमार। पगड़ी लगाए, हल उठाए या हुक्का पीते, हमारे देश के किसानों की न जाने कितनी छवियां, मगर कल क्या होगा किसी को पता नहीं, खासकर तब जब टाई लगाए मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव खेती का काम संभाल लेंगे, यानी कॉरपोरेट किसानी का काम करने लगेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या किसानों को भी इसकी जानकारी है, क्या उन्हें इस बात का इल्म है कि वे भी किसान से कॉरपोरेट बन सकते हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट।
और नए किसान हैं, देश को उद्योगपति बनने का सपना दिखाने वाले मुकेश अंबानी अब खेती करने का सपना दिखाएंगे। लेकिन खुद सपना देखना शुरू कर दिया कोई 10 साल पहले से, जब धीरूभाई अंबानी ने जामनगर की रिफाइनरी को पेड़ पौधों से ढक देने की योजना बनाई। आलम यह है कि रिफाइनरी की बड़ी मशीनें इन पेड़ों के पीछे छुप गई हैं। शायद ये खेती का नया कद है। 27 लाख पेड़ पौधों का यहाँ जंगल बन गया है, वो भी बंजर जमीन में। लेकिन आज यहाँ सागवान से लेकर अंगूर तक की खेती हो रही है। सब कुछ इतनी तैयारी से कि किसी को भनक तक नहीं लगी। तब भी नहीं जब कुछ समय पहले रिलायंस ने गुजरात के कालावाड़ के कृषि मेले में अपना स्टॉल लगा दिया।
ऐसी बात नहीं है कि हमारे किसान जमाने से बेखबर रहे।
अब ये किसान
जब
संगठन के बारे
में मिली है और उन्होंने संगठन का मोल समझा है, नए नए प्रयोग किए हैं। हम इस वक्त गुजरात के भरूच जिले के झागड़िया कस्बे के इन गांव में मौजूद हैं, जहां लोगों ने जानकारी और कोऑपरेटिव बनाकर अपने केले को फिलीपींस तक पहुंचा दिया और ताइवान का पपीता उगाने लगे हैं।
झागड़िया कस्बे के गांव में पैंट शर्ट में मोटरसाइकिल पर सवार ये लोग किसान ही हैं, जो कॉरपोरेट से टक्कर लेने की तैयारी में हैं। कामयाबी और आत्मविश्वास की नई छवि। ये सब कुछ नहीं होता अगर नाबार्ड के कहने पर ये किसान क्लब नहीं बनाते। संगठन की ताकत आते ही किसानों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने केले का उत्पादन दुगना कर दिया और खेती पर पैसे की बचत की तरकीब निकाली। ड्रिप के जरिए इन लोगों ने सिंचाई का खर्च बचाया तो पाइप की खरीद में मोल भाव से 12 लाख रुपए बचा लिए। क्लब की तरफ से थोक ऑर्डर देने से निवेश की लागत कम हो गई।
तो फर्क ये रहा कि जो गैप है वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन की वजह से, संगठन की वजह से और स्केल ऑफ ऑपरेशन। आज ये जो फार्मर्स क्लब और सोसाइटी है वो 1000 ट्रक यानी 10 ट्रक यानी 10,000 ट्रक टन का केला बेचती है। तो ये स्केल ऑफ ऑपरेशन है, उसकी वजह से बड़ी बड़ी जो बिग वेल इंटीग्रेटेड कंपनी है या पीडिया है उनसे इनका नाता शुरू हुआ, जो पहले इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं हो सकता था।
उत्पादन बढ़ा तो किसानों ने कॉरपोरेट होना शुरू कर दिया। पहले देश भर के बाजारों में हर दिन का भाव पता करने लगे, फिर बिचौलियों को भगाने की तरकीब निकाली। वो बिचौलिए जो कम भाव और कम तौल के कारण किसानों को ठग ले जाते थे, अब ये किसान कंपनियों से खुद बात करते हैं, अपना रेट तय करते हैं और माल भी तौलते हैं।
पहले तो मालूम नहीं पड़ता था, वो सब दलाल लोग बेच रहे थे, इसलिए कोई खेडूत पूछ नहीं रहा था। अभी क्या हुआ कि हमको सब जगह का रेट मालूम पड़ता है। महाराष्ट्र में क्या रेट चलता है, पंजाब में क्या रेट है, अभी आज क्या रेट से बिकी है गाड़ी।
कॉरपोरेट होते इन किसानों की वजह से उनके गांव की इस बैंक शाखा का कारोबार करोड़ों में पहुंच गया है। जाहिर है किसानों ने नई खेती से कमाई बढ़ा ली है, पैसे से साहस बढ़ा और लोगों ने पहली बार ताइवान का पपीता लगा।
कैसा लगा? बहुत सरल है। जब हमारी जो मूल्यनिष्ठ जीवन और मूल्य किसानों में आ जाए तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आपने देखा मैं ही निमित्त बना, मेरा रोल नहीं था, वॉलेंटियर किया, लेकिन ये सब शक्ति मुझे परमात्मा शिव ने दी। और जब मेडिटेशन में इन्वॉल्व हुए, ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटरों पे जाने लगे, रेगुलर हो गए, तो किसानों के साथ डील करना हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या एक्सपोर्ट एजेंसी से बहुत इजी होने लगा। क्योंकि जहां परमात्मा शक्ति हम बच्चों के साथ होती है तो सब कुछ संभव होने लगता है। तो यह है विश्वास। लेकिन यहाँ एक स्टोरी में कहना चाहूंगा कि हमारी टाइप स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से हुई केला एक्सपोर्ट के लिए, और वहां स्विट्जरलैंड की कंपनी को पैकाउस बनाना था किसानों के संगठन के। तो वो लोग एक जगह ढूंढ रहे थे लीज पे, उसमें जो कि एक किसान की उन्होंने सिलेक्ट किया कि मैं हम आपको 1 एकड़ का साल का 10 लाख रुपया देंगे, आप इसमें केले मत लगाना और हम यहाँ पैकाउस क्रिएट करेंगे। तो एक दूसरा ग्रुप खड़ा हो गया कि देखो 1 लाख, 1 एकड़ का 10 लाख यानी, तो आपसी झगड़े शुरू हुए इस संगठन में। और इस झगड़े यहां तक पहुंच गए कि हमारी एक्सपोर्ट टाइप होने के बावजूद सप्ताह के 5 केले के कंटेनर मुंबई पोर्ट से यूरोप जाने के लिए सब तय हो गया था, लेकिन झगड़ा शुरू हो गया। तब मुझे सहयोग लेना पड़ा ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों का, उनकी शिक्षा का, और साथ साथ में किसानों के साथ वो प्रेम स्नेह और वापिस वो संगठन को एकजुट करने की मौका मिला। इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि आप जहां आए हैं वो बहुत सही जगह है। अगर कुछ भी क्रिएटिव करना है तो हमें आध्यात्मिक शक्ति
के साथ ही करना होगा। थैंक यू। नेक्स्ट,
पांचवा मूल्य है सहयोग। आपने इसका हमें एक उदाहरण नेचर से ही मिलता है, कुदरत से ही मिलता है। आपने कभी असल जीवन में या नेशनल ज्योग्राफी या कहीं पे एक हाथी के समूह को चलते हुए देखा होगा, कितना निश्चिंत होकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हम संगठन में है, समूह में है, तो कोई हमारा शिकार कर ही नहीं सकता। वैसे कहा जाए तो हाथी सबसे बड़ा, जंगल का सबसे बड़ा प्राणी है, पर अगर वो अकेला है तो उसका शिकार हो सकता है, पर अगर वो संगठन में है तो कोई भी दूसरा जंगली जानवर सोच भी नहीं सकता कि इस हाथी के संगठन को अटैक करे, तो वो उनका निश्चिंतता बढ़ जाती है, वो उनका पावर है। वैसे ही एक अभी एक हम आपको उदाहरण देंगे, केस स्टडी है, फिर से वो फोटो आप दिखाएंगे वहां पे। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं अभी सबसे ज्यादा बर्निंग प्रॉब्लम इंडिया के एग्रीकल्चर में क्या है, कोई बता सकता है आप में से? जंगली जानवर। अब आप सोचिए, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं जंगली सुअर का, यहां पे हमारे कितने सारे किसान भाई और आप जो बैठे हैं, आपको मेरे ख्याल से 99% ऐसे होंगे जिनको जंगली सुअर बहुत ही अपने खेतों में सताते होंगे। अब उसका उपाय क्या है? बहुत सारे किसानों ने बहुत सारे उपाय जो है वो किए, पर बहुत सारे उसमें निष्फलता भी मिली। पर यहां पे हमने सहयोग से, ये एक मूल्य से, हमारे एक बार मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था, हमने जो मंथली मीटिंग करते थे वहां पे एक गांव में सारे किसानों ने बोला, साहब हम परेशान हो गए हैं जंगली सुअर से, अब हमें इससे मुक्ति चाहिए, और हमें वो जो करंट वाला जो होता है, जो डीसी करंट पल्स छोड़ता है, हर एक सेकंड में एक पल्स छोड़ता है, उसको झटका मशीन गुजराती में कहते हैं, तो हमें झटका मशीन चाहिए, अब कैसे भी करके दिलाइए, कॉरपोरेट की मदद से, क्योंकि हम सीएसआर का वो फंड आता है तो उसकी मदद से दिलवाइए। तो हमने उनको कहा, पता है आपको कितने का आता है झटका मशीन? तो उन्होंने कहा कितने का, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का अगर लेने जाए, अच्छी वारंटी ISI मार्किंग द्वारा, तो वो 8,000 रुपए का आता है। अब आपके पास कितनी है, तो कोई कितनी जमीन है, तो वो कोई बोला कि मैं हमारे पास 1 बीघा है, कोई बोला मैं बस 2 बीघा है, 5 बीघा है, तो आप 2 बीघा में 8,000 का खर्चा करेंगे? तो फिर सबका जो गुस्सा उठ गया था वो बैठ गया कि नहीं नहीं इतना तो ज्यादा नहीं कर सकते। फिर हमने उनको एक तरकीब बताई कि आप ऐसा तो कर सकते कि आपके बाजू में जिनका खेत है आप उनको अपने साथ जोड़ दीजिए, और जो झटका मशीन का खर्च है वो आप दोनों डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसा हुआ, उस 5 गांव के जो हमारा क्लस्टर था वहां पे अभी कुल 45 से 50 ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, जिनका किसी एक ग्रुप में 2 लोग है, किसी एक ग्रुप में 5 किसान जुड़े हुए हैं, किसी एक ग्रुप में 4 किसान जुड़े हुए हैं, कहीं पे 10 एकड़ का फेंसिंग है, कहीं पे 15 एकड़ का फेंसिंग है, कहीं पे 2-3 एकड़ का फेंसिंग है, पर वहां पे किसी ने भी सरकार के सामने सब्सिडी की राह नहीं देखी, क्योंकि संगठन में थे। अब आप सोचिए, 8,000 का खर्चा है, अगर 4 लोग जुड़ जाते तो कितने का हो गया? 2,000 का हो गया। तो वैसे करके अभी वहां पे 300 से ज्यादा बीघा पे ये फेंसिंग जो आप देख रहे हैं वो खड़ी है, सोलर फेंसिंग। और अभी जब हम जाते हैं वहां पे मीटिंग में, किसानों की आंखों में चमक होती है, जो बहनें मीटिंग में आती है वो कहती है कि साहब हम रात को मक्का बचाने के लिए सोने नहीं जाना पड़ता, चैन से सो पाते हैं, बहुत ही ज्यादा जो है उनको फायदा हो रहा है। तो ये जब सहयोग वाला जो मूल्य है वो हमने इन्फ्यूज किया, तब जाके ये पॉसिबल। अब हम सेकेंड लास्ट, वो हम बाद में प्रश्न उत्तर बाद में करेंगे, अभी समय की थोड़ी, एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जवाबदारी, जितना संगठन जितना बड़ा होता जाता है उनकी जन कल्याण के प्रति उतनी जवाबदारी जो है वो बढ़ जाती है। ये जो आप उदाहरण देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फोटो है, वहां पे ज्यादातर किसान जो है वो कैनाल, जो नर्मदा से जो कैनाल आती है उस पर अपनी सिंचाई के लिए डिपेंडेंट है। अब वो जो कैनाल है, गुजरात सरकार जो सरकार की कंपनी है उसका ये रूल है कि तकरीबन 15 मार्च के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 पानी देंगे और 31 मार्च पे वो कैनाल बंद कर देते हैं। अब हमने नया नया किसानों को सिखाया कि आप जो पहले समर में गर्मी की सीजन में खेती नहीं करते थे, वहां पे तिल की खेती करवाई, बाजरे की खेती करवाई, तो वो करने लगे थे किसान, बोले पर साहब हमें पानी तो चाहिए, तो पानी कैसे लाएंगे? तो हमने ऐसा एक प्लान डिवाइस किया, उसमें हमारी जो कॉरपोरेट जो साथ में हमारी पार्टनर है एलेम्बिक, उनका भी बहुत बड़ा सहाय और विजन था। हमने आपको पता है 23 दिसंबर कौन सी तारीख होती है, क्या होता है 23 दिसंबर को हर साल? राष्ट्रीय किसान दिवस। तो हमने वहां पे 2000 किसानों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय किसान दिवस सेलिब्रेट किया, और वहां पे जो लोकल MLA थे उनको इन्वाइट किया। और वहां पे उनको ये दिखाया, चावल का पैकेजिंग दिखाया, सारी चीजें दिखाई, उनका सम्मान किया, तो बहुत खुश हो गए। और आखिर में हमारे ही किसान जो जरूरत किसान मंडल है उनके ही प्रतिनिधि ने पूरी पब्लिक के सामने एक अर्जी करी एमएलए को कि साहब हम ये अब नई खेती हमने शुरू करी है तो आप क्या एक महीना और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वो एमएलए इतना खुश था तो पब्लिक में कमिट करना पड़ा कि नहीं नहीं चलो हम सिंचाई जो है वो चालू करते हैं। तो सिर्फ वो एक गांव के नहीं, टोटल 28 से 40 गांव के बीच सारे गांव को फायदा मिला क्योंकि वो कैनल अप्रैल तक इस साल 2025 तक चालू रही। तो ये है जन समर्थन, पब्लिक सेंट्रिक भी हमें मूल्य जो है वो उजागर करने होंगे। और आखिरी इनोवेशन, इनोवेशन पे भी बहुत ज्यादा जोर, जब भी कोई किसान संगठन या एफपीओ हो वो जोर दे उसका बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अभी तक हम जितने भी एफपीओ रजिस्टर कर रहे हैं आपके भी जान पहचान में होंगे, ज्यादा से ज्यादा अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मार्केटिंग या तो फिर खाद और इन सब का एग्रीकल्चर इनपुट्स का सोर्सिंग, उसी पे ज्यादा जोर दिया जाता है। पर ऐसी भी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजियां हैं जिनसे हम किसानों को बहुत ही ज्यादा अच्छे रूप से मदद कर सकते हैं। बहुत सारी बार किसान जो होते हैं ना वो यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देख लेते हैं, अच्छा ये टेक्नोलॉजी आई है, ये कोई ट्रैक्टर का अटैचमेंट आया, पर वो कहां से लेना कैसे लेना उसमें फिर किसानों को पता नहीं होता। पर जब हम एफपीओ द्वारा या संगठन द्वारा वो एक पहल करेंगे तो किसानों को, छोटे से छोटे किसानों को भी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है उस पर एक्सेस मिल जाएगा। तो जैसे आप ये इसमें फोटो में देख रहे हैं पीपीटी में, आप ये देखिए लेबर सेविंग टूल्स है जो सबसे पहला फोटोग्राफ है लेफ्ट में, सारे किसानों ने वहां पे टूल बैंक बनाया है, जो खरपतवार करने नीचे बैठ के जो मजदूर करते हैं वो अब खड़े खड़े कर सकते हैं ये टेक्नोलॉजी की मदद से। ड्रोन टेक्नोलॉजी अब किसान हमारे यूज कर रहे हैं। क्यूआर कोड जो आप नीचे देख रहे हैं, आपने कभी सोचा है कि अभी हम पेमेंट तो क्यूआर कोड से करते हैं और आप सपोज शहर में रह रहे हैं, कोई एक बड़े मॉल में डीमार्ट में गए, आपने चावल का पैकेट खरीदा, पर वो चावल किस किसान ने उगाया है, उसने कितना खाद उसमें इस्तेमाल किया है, वो तो हमें जानकारी नहीं होती है। पर हमारे किसान जब चावल के पैकेट में ये क्यूआर कोड लगाते हैं और कोई भी उसको स्कैन करता है तो जियोटेक फोटोग्राफ के साथ पूरी डिटेल आ जाती है, किसान के नाम नंबर, उसका डिस्क्रिप्शन, क्या उम्र है, वो कितना डेडिकेटेडली काम करता है, वैसा पूरा आ जाता है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ऐसी सारी और ये जो टेक्नोलॉजी बहुत ही किफायती है, बहुत ही कम कीमत की है, उसकी एक छोटी सी उदाहरण आखिरी मैं आपको दिखाना चाहूंगा टेक्नोलॉजी का, वो है हाइड्रोजेल। आप में से जो लोग एफपीओ के प्रतिनिधि है तो ये आप जरूर से किसानों को ये टेक्नोलॉजी जो है वो डिसेमिनेट कर सकते हैं हाइड्रोजेल के ऊपर।
तो आप देख रहे हैं कि जहां पानी की कमी है या दो फ्रीक्वेंसी के बीच में आपको पानी कम मिल रहा है तो ये एक छोटा सा टेक्नोलॉजिकल टूल है और वो बिल्कुल प्राकृतिक है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई जमीन बिगाड़ने वाली बात नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि छोटा सा पाउडर का ये है, ये फ्रूट्स के छिलकों में से बना है और इसको हाइड्रोजेल कहा जाता है। अगर जमीन में डीएपी की जगह डाई अमोनियम फॉस्फेट जब जमीन के अंदर ये डाला जाता है, बहुत कम मात्रा में जाता है, उससे ये नमी पकड़ता है अपने से 200-250 गुना ज्यादा, तो एक इरीगेशन देते हैं तो वो नमी पकड़ के बैठता है। हमारे गेहूं 5 या 6 इरिगेशन के सामने 3 इरिगेशन में हो जाते हैं। ये जब देखिए आप देख रहे हैं कि कैसे पानी को उसने सोख के रखा है और ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, अगर ये किसानों के पास पहुंच गई तो बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इसको फिर से आप देख रहे हैं, है ना, तो ये हाइड्रोजेल टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो दैट्स फाइनल नाउ। यस, हमारी
तुम चलो, हाँ,
दो लास्ट 2 मिनट आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि आप परमात्मा स्थान पे अपनी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं। किसी भी समस्या को छोटा नहीं समझना और किसी भी बड़ी समस्या को बड़ी नहीं समझना। आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, उसमें ये 7 गुण कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं समस्या का समाधान, आप देखिए और फिर हम लोग आपसे इजाजत लेंगे। इसमें कोई भी बड़ी समस्या हो छोटे से छोटा व्यक्ति भी उसको सॉल्व कर सकता है और सहयोग तो जरूर मिलेगा। ये आप देखिए कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, यही किसानों के संगठन में भी यही लागू पड़ता है।
Okay. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है।
ट्रैफिक जाम हुआ है, पेड़ गिर गया। पॉलिटिकल सिस्टम कुछ काम की नहीं।
तुम चलो तो हिंदुस्तान चले,
ट्रैफिक पुलिस पंचायत,
हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, लगा हाथ के सूरज सुबह निकाल करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे,
और चलो पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो,
तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले,
बस। ओम शांति। आप सबको बेस्ट विशेष के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ए पेशेंट हियरिंग। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजेश दवे जी को और महर्षि भाई जी को, जिन्होंने संगठन के महत्व का बहुत सुंदर हम सबको प्रेजेंटेशन दिखाया। इसके पश्चात हमारे बीच में डॉक्टर मृता देव सिंह जी हैं, जो कि प्रदेश मंत्री सहकार भारती हमीरपुर से हैं। डॉक्टर देव सिंह जी, आपने फिलॉसफी में पीएचडी किया हुआ है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आईआईटी के साथ मिलकर आपने पीएचडी वर्क किया जो फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदे का रहा, हमीरपुर बुंदेलखंड में डिग्री कॉलेज आपने स्टेबल किया, हमीरपुर जिला उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र जैविक जिला जिसमें प्रथम चरण में 10,000 फार्मर्स को संगठित करके प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया, देश में 3 जिलों में से एक हमीरपुर जिले को 2500 युवा के मृदा प्रशिक्षण एवं परीक्षण द्वारा प्रशिक्षण करने का कार्यक्रम किया गया, प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमीरपुर जिला पायलट जिला प्रोजेक्ट में प्रथम रहा, वर्तमान में आप सरकार भारती प्रदेश मंत्री के तौर पर एफपीओ के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश स्तर के कार्य कर रहे हैं। भ्राता डॉक्टर देव जी, बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि दीप की तरह जलता है कोई कोई, वृक्ष की तरह फलता है कोई कोई, बातों में तो प्रवीण है सभी बुद्धिजीवी, त्याग की राह पर चलता है कोई कोई, त्याग की राह पर चलता है कोई कोई, ऐसे अपने जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन लेकर हमारे बीच अपने अनुभव शेयर करने के लिए आ रहे हैं भ्राता डॉक्टर देव सिंह जी।
ओम शांति। परम सद्धे मंच के आज में ब्रह्म कुमारी सुनिंदा बहन जी, हमारे बड़े भाई अभी जिनको आपने तुरंत सुना, ब्रह्म कुमार राजेश दवे जी, और उनके साथ अभिन्न रूप से चलने वाली उनके जो बेटे हैं, युगल जोड़ी है, हमारे ब्रह्म कुमार महर्षि दवे जी, हमारे भाई भ्राता विनोद लाहौटे जी, ब्रह्म कुमार कृषि भूषण भगवान जी, भ्राता एस वी चौधरी जी, और यहां पर उपस्थित समस्त भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को मेरा कोट कोट नमन प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी हमारे बड़े भाई राजेश दवे जी ने संगठन के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी दी और किस तरह से संगठन के ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिनको हम मान करके चले और जिससे कोई भी संगठन सफल हो सकता है, इसकी आपने पृष्ठभूमि में रूपरेखा समझ ली है। अब मैंने जो व्यवहारिक रूप से काम किए, जैसे अभी आप बहुत से लोग हैं, हो सकता है आप इन नियमों से जो अभी भाई जी ने बताया सिद्धांत परिचित ना हो, मगर जब आप काम करते हैं तो नैसर्गिक तरीके से एक जो समस्या होती है वो समाधान लेकर के आ जाती है, और आप नहीं जानते होते हैं। बहुत से जैसे हमारे किसान भाई हैं, वो नहीं जानते हैं कि इंटीग्रिटी क्या है, यानी ईमानदारी क्या है, मगर जो जब अपना काम करने लगता है तो काम करने समय ही उसे पता चलता है कि मेरा प्रोडक्ट है या मेरा उत्पाद है, तो उसको उपभोक्ता किस तरह से स्वीकार करेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जब ये क्या करना चाहिए की बात आती है, वहीं पर हमारे मूल्यों की बात आ जाती है। तो हम सीखने लगते हैं, काम करते करते सीखने जानने लगते हैं। क्योंकि मैं दर्शन का विद्यार्थी रहा, फिलोसफी ऑफ माइंड जो मेरे जो विषय है, अध्ययन के बाद मेरे जब सिलेक्शन हो गया तो मैंने ये तय किया कि मेरा जो विषय था वो किसानों के ऊपर ही था, और वो जुड़ा हुआ था सुसाइड पे, जुड़ा हुआ था फार्मर सुसाइड और जीवन का अर्थ क्या, मीनिंग ऑफ लाइफ। तो मैंने तय किया कि नहीं, मुझे काम करना है बुंदेलखंड जो मेरा क्षेत्र है हमीरपुर। वहां जाने के बाद हम लोगों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर के एस्टेब्लिश किए। इसके बाद हम सीधे तौर पे 2003 से और मुक्त पूर्ण रूप से 2007 से सक्रिय होकर के इसमें काम करने लगे, क्योंकि बड़ी वेदना थी किसानों की। अब उसमें यह था कि चूंकि हमने सीधे तौर पर, मैं जबकि मेरे पिताजी किसान का बेटा ही हूं, बहुत नजदीक से उनको भी किसानी खेती गांव में रहते हुए देखी थी, मगर अध्ययन के दौरान एक गैप था और मैं ह्यूमन साइंस से जुड़ा हुआ था, तो मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की डिसिप्लिन से नहीं था, तो मैंने स्वयं रह करके करना चालू किया। और अध्ययन के बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कहते थे, अब हम उसको नेचुरल फार्मिंग, अब हम जिसे शाश्वत योगी खेती कहेंगे, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बोलूंगा। तो हमने स्वयं, मैंने अपने खेत पे रह करके वो सारे मॉडल पिछले 8-9 साल तक हमने उस पर काम किया कि ये वास्तव में करके देखते हैं। लोग कहते हैं और किसानों के सामने कितने जो चैलेंजेज होते हैं बताया जाता है बड़े बड़े, और एक लंबे समय से मैं भी सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज करते करते जब तक नहीं जमीनी हकीकत क्या है, हमें करना चाहिए। अब जो हम सिद्धांत रूप से करते हैं कि संगठन कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी आज जो हमारा विषय है, हमारे इसमें सनातन कृषि संस्कृत के अंतर जो हमारा आज के ये विषय है, वो है आत्मनिर्भरता, यानी संगठन कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। अगर कोई भी संगठन मूल्यनिष्ठ नहीं है तो आप ये जान लीजिए वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अगर मूल्यों पर आधारित अपने जीवन को नहीं चला रहा है तो वो भी सफल नहीं हो सकता। आप किसी भी संगठन में हो, कोई सरकारी या गैर सरकारी संगठन हो, उसके अपने नियम होते हैं जिनको हम लोग सब फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, और जो उन नियमों को बहुत अच्छी तरीके से जीता है वही उसी व्यक्ति का सम्मान बन जाता है। जैसे अभी हमने इसमें बात की ना सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो आपका कार्य ही वो निरूपित कर देता है, तय कर देता है। अब जो चीज हम अपने लिए अच्छा समझते हैं, अगर वही चीज हम दूसरे के लिए करते हैं और उसको जब हम सामूहिक तौर पे करने लगते हैं तो वो संगठन का रूप स्वरूप हो जाता है। मेरा जो अनुभव रहा, जब हमीरपुर जिला, हमारे आदरणीय बद्री बड़े भाई बद्री विशाल जी बैठे हैं, क्योंकि शायद आपने सुना तो है मगर उनकी जो खूबियां हैं तो मैं हर बार मुझको बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, मैं बिना कहे रुक नहीं पाता। उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक ऐसी दिशा दी जो देश का पहला प्रदेश था जहां पर डीबीटी, जिसको आप सब लोग जानते हैं, आपके सीधे खेत में, मतलब खाते में पैसे आते हैं, उनके करने में उनकी बड़ी बहुत ही जबरदस्त भूमिका, और उनका पूरा चरित्र बेदाग ईमानदार रहा। जब मैं पहली बार 2012-13 के आसपास ब्रह्म कुमारी से जुड़ा, मेरी युगल जाति थी, मैं जुड़ा, उन्होंने मुझे बद्री भाई जी का परिचय दिया, मैं बद्री भाई जी से मिला। उस दिन के बाद मेरे अंदर भी ये साहस आया कि कितनी भी परेशानी आए मगर मुझे टूटना नहीं है, और मैं उससे अडिग बना रहा अपने। जब मैं कार्य क्षेत्र में जब गया तो चूंकि आपको अपने कर्म से ही अपने आप को स्थापित करना था, तभी लोग आपके साथ आते, संगठन के तौर पे आते। लगभग 2016 या 17 के आसपास होगा, जो हमारा जो जिला है हमीरपुर, वो पूरे जिले को, प्रदेश का अकेला जिला था जिसको जैविक जिला किया गया और सौभाग्य से बड़े अच्छे अधिकारी थे जिनके सहयोग से हम लोगों ने उसको काफी अच्छी तरीके से करने की कोशिश की। ये मैं चूंकि अनुभव की बात है इसीलिए बता रहा हूं, क्योंकि पहले फेज में ही बहुत अधिक फार्मर्स थे, हम लोगों ने रात रात भर जाकर के किया कि कैसे उनको संगठित करना है, कैसे उनको जागरूक करना है, किस तरह से करेंगे। अब लोगों ने धीरे धीरे, क्योंकि पहली बार चीजें हो रही थी, एक बदलाव था, बदलाव के साथ काम करना था, चैलेंज था हमारे पास में कि इनको कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ऑपरेशनल कैसी चीजें कर पाएंगे, जिसके लिए मैं अपने में तो काम किया और उन लोगों के साथ काम करना चालू किया। इसके बाद जिसे सरकार की ये थी कि कैसे इसको मार्केट उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे ये विषय आया, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर हमारे सब किसान भाइयों के सामने पहले था और अभी भी है। हमारी सोचने की बात है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद, इतनी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी एजेंसीज हैं, इतने एनजीओज हैं, सब किसान के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे किसान भाई यहां पर जितने बैठे होंगे वो ईमानदारी से सोचें कि वास्तव में स्थितियां उनके लिए सहज हुई हैं या और विकट रूप धारण कर ली हैं। तो अगर विकट रूप धारण कर ली रही हैं तो ये आपको कई अलग तरीके की चीजें आ गई, क्योंकि पहले भी हम लोग मिलकर खेती करते थे, आज हम लोग कई कारणों से, चाहे मशीनें या कुछ भी है, कई कारणों से अकेले हुए, और अकेले होने की वजह से आज हमारी बहुत सी परेशानियां खेतों पे तय हो गई हैं। उसी के लिए उसका एक विकल्प आया, संगठन। अब संगठन में अगर वो मूल्यनिष्ठ है, जैसे संगठन में यही बात हो जाए जैसे भी हमने बात की थी, बड़े भाई जी ने बताया कि कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, अगर हम मिलकर नहीं काम करते हैं तो कहते ना अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। आप बहुत विद्वान हो सकते हैं, बहुत आपको नॉलेज हो सकता है, मगर आप बताइए अगर आपको कोई एक सामान उठाना हो, अकेले नहीं उठा सकते तो किसी और का सहयोग लेना पड़ेगा। इसी तरह सहयोग लेना पड़ेगा, सहयोग के साथ करेंगे, और उसमें जो सबसे बड़ी बात आएगी कि मेरे साथ दूसरा, जो अगर मैं अपने को अच्छा चाहता हूं तो वो दूसरा कैसे हो, इसी दो से तीन और चार से हमारा संगठन बनेगा। यहां पर एक और बहुत व्यवहारिक समस्या खड़ी होती है, वो समस्या ये होती है कि हम जिस समस्या के समाधान के लिए एक संगठन का स्वरूप लेते हैं तो वो संगठन ये हो जाता है कि इस संगठन के निहित स्वार्थ क्या हैं, इस संगठन के लिए जो हमें काम करना है, तो एक हमारे कॉमन इंटरेस्ट हो जाते हैं उस संगठन के। अब जब ये कॉमन इंटरेस्ट एक संगठन के होते हैं तो वो किसी और के खिलाफ वो संगठन काम करता है। आप सोचिए कि मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, यानी हमने हमारे हित उस संगठन के हो गए तो आपका एक संगठन बना, अगर वो पॉजिटिव नहीं है वो संगठन भी, यानी वो संगठन का क्या हित होना चाहिए, यानी वो लोगों के लिए संगठन काम करे, कोई दूसरा भी संगठन है, नहीं तो संगठन संगठन का टकराव है। तो यहां पर जब तक हमारा लोक कल्याण की भावना नहीं आएगी उस संगठन के अंदर भी, तो दूसरे संगठन के लिए लगेगी तो मुझको अपने संगठन के फायदे के लिए काम करना है। तो वो संगठन, जिस तरह एक व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे अपने लिए काम करना है या इसी तरह मुझे पूरे संगठन के लिए, तो संगठन भी एक व्यक्तिपरक यूनिट की तरह काम करेगा। तो उसको इस बाउंड्री को तोड़ना है कि वो संगठन काम तो करेगा मगर सभी के लिए करेगा। तो जब सभी की बात करेगा तब हमारा वो कहां से हमें प्राप्त होगा, वो जो आप आज आपने सुबह सुना, वो आपको ऐसे ही संस्थाओं से मिलेगा, हमारे यहां ब्रह्म कुमारी से मिलेगा आपको ताकत, आत्मबल, तब पता चलेगा कि मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है और क्यों करना है, ये इसके सारे उत्तर यहां मिलते हैं। तो वो जब हम खेती करते हैं या कोई संगठन करते हैं तब हमें पता चलता है कि मेरा वास्तव में कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है। तो उसके लिए हमारा ये संस्थान है जो आपको व्यवहारिक तरीके से सिखाता कराता। और मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी यहां पर आए आपके बड़े सवाल होंगे, अरे ये कैसे होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है। अभी जब शुरुआत भी हुई थी, मैं उस तरह से नहीं, इसको कोई दूसरे सेंस में ना ले, जब से पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो इस क्षेत्र के लिए बहुत भरपूर बजट बढ़ाया गया, उसके पहले इतना बजट नहीं होता था। बजट बढ़ा और प्रणालियों के अंदर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, उन चीजों की बड़ी पारदर्शिता के लिए बनाई गई, उससे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। अब इस लाभ के साथ जिस तरह हो गया, मगर उसके साथ मॉरलिटी, हमारे जो मॉरल वैल्यूज हैं, इथिक्स है, उसके साथ ही हमको बढ़ना पड़ेगा, और उसी से आपको संतुष्टि और दूसरे को भी सुख काम कर पाएंगे। तो इसलिए यहां पर हमारी जो शाश्वत योग्य खेती है
वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये किसी और तरह की खेती में जो इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है उसका ह्रास है। आपको यहां पर संदेह होता है कि वाइब्रेशंस कैसे होंगे। आप मेरी, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझको देख रहे हैं, क्या आप अपनी नजर को पकड़ सकते हैं? रीजंस और एक्शंस पे चलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं ये भविष्यवाणी कर दूं कि मैं कल 8 बजे जगता हूं तो कल भी 8 बजे जगूंगा, मगर साइंस की चीजें सत्य हैं, फैक्चुअल चीजें हैं। इसलिए हमें ये सोचने की जरूरत है कि जिस तरह के हम आंसर नेचुरल साइंसेज में देखते हैं, उस तरह के हम ये जो हमारी आध्यात्मिक है उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जब हम स्पिरिचुअलिटी की जाते हैं तो उसकी पराकाष्ठा है, नेचुरल साइंस की भी पराकाष्ठा है। अगर आज आप वर्तमान में देखेंगे तो आप देखिए, बायोलॉजी वाला जो अपने अपेक्स पे जाता है तो मैथमेटिशियन बन जाता है। अभी बाबा को पढ़ेंगे, मैं फिलोसफी में जब देखता हूं तो उन्होंने, बाबा ने बहुत से दृष्टांत दे रखे हैं फिलोसफी के अंदर आने वाले की, वो मैथमेटिशियन थे, फिजिक्स थे, मगर उन्होंने सोल पे काम किया, है ना, आने वाले तो उसने आत्मा पे, कॉन्शसनेस पे काम किया, चेतना के लिए बड़े बड़े काम किए। तो ये क्यों काम किए? ऐसा कुछ भी बटा नहीं है, हम लोग जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी हमारा पार्ट है, अध्यात्म हम उससे जुड़े नहीं है, मगर हम उसको जुड़ के जब काम नहीं करते हैं उसके दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं, वो हमारी केमिकल फार्मिंग से हो रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इसलिए हमको सभी को शाश्वत योग्य खेती को केंद्र में रख करके प्रयोग में लाना होगा, और आपका अपना खुद का प्रयोग आपको बता देगा कि सत्य क्या है। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है, मगर आपको विश्वास करना होगा, आपको अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। और आपके सामने ये इतना बड़ा संगठन संस्थान आपके, कि जो इतने लोगों को लेकर के कितनी सहजता से चल रहा है, ये किसी बिना मानव जितने हमारे वैल्यूज के बिना नहीं चल रहा होता। तो यहाँ मॉरल वैल्यूज हैं जो आप जीते जाता देख रहे हैं, और सब लोग जितने आए हैं किसी से हम बात करते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा क्यों लगा? क्योंकि पॉजिटिविटी है, और ये संगठन मॉरल वैल्यूज पे ही आधारित है, वही आधार है हमारी आध्यात्मिकता का भी। तो यहां से हम यही सीख के जाएं कि ये संगठन इस तरह से चलता है तो हमारा किसान संगठन भी इसी तरह से चल सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई देव सिंह जी को, जिन्होंने सार में अपना अनुभव हम सबके साथ शेयर किया। इसके पश्चात बुलाना चाहूंगी भ्राता विनोद लाहौटी जी को, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जियो लाइफ एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से हम सबके बीच में आए हैं। आपसे भी अनुरोध करूंगी अपना अनुभव हम सबके साथ शेयर करेंगे भ्राता विनोद लाहौटी जी।
ओम शांति। मंचासीन सभी महानुभावों को और यहां पे उपस्थित सभी देवी और देवताओं को मेरा प्रणाम। कुछ लोग नए भी आए होंगे, पहली बार भी आए होंगे, तो आने के टाइम पे सबकी भावना होगी कि यहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ लेने को मिलेगा हमको, लेकिन 2-3 दिन के बाद में सबकी भावना बदल गई होगी कि मैं क्या दे सकता हूं, लेने की जगह देने की भावना आई होगी और देवी देवता बन के ही जाएंगे हम यहां से, है कि नहीं। तो आज मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि बाबा ने मेरे जीवन में कब कैसे टच किया। एक अकेला था मैं, और आज 650 लोगों का संगठन बना है, और इस जर्नी में बाबा ने कैसे कहां टच किया, कैसे संकल्प दिया और उस संकल्प को कैसे साकार कराया। तो पोषण की खेती के ऊपर हमने काम किया, मतलब आज हम जो भी अनाज खा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन कम है, केमिकल ज्यादा है, टॉक्सिन जहर ज्यादा है, तो उसको रिवर्स करने के लिए क्या करना है उस पर हमने पिछले 16 साल से रिसर्च किया। मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या अनुभव रहा और कैसा उसका रिजल्ट आया। तो मैं ऐसे तो जोधपुर से बिलोंग करती है फैमिली, लेकिन दादाजी काफी पहले हैदराबाद आ चुके थे, हैदराबाद के पास एक छोटा सा गांव है कोडंगल, वहां से बिलोंग करते हैं। वहां पे हमारा कई अलग अलग बिजनेस है फैमिली का, तो फर्टिलाइजर्स का बिजनेस भी हमारा है, 1973 से 52 साल से फर्टिलाइजर का बिजनेस है। और वहां पे मैंने अपने एजुकेशन के बाद जब ज्वाइन किया फैमिली बिजनेस, देखता था कि किसान आके बोलते मेरे खेत में बहुत कीड़ा लगा हुआ है, 2 दिन में काटना है फसल, हार्वेस्ट करना है, बहुत पावरफुल दवा दो। तो उस टाइम पे लगता था बेचारे को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, 2 दिन बाद अगर हार्वेस्ट कर रहा है तो लिटरली अनाज के अंदर, सब्जियों के अंदर जहर भर के दे रहा है वो। तो वो एक कहीं ना कहीं तकलीफ था, मन में लगता था कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि विष मुक्त खेती हो सके, पोषण युक्त खेती हो सके। तो वो संकल्प वहां पे मिला। तो उस संकल्प के चलते कुछ साइंटिस्ट, रिटायर्ड साइंटिस्ट मिले हमको, जिन्होंने अपने जीवन में पोषण के ऊपर काफी काम किया, रिसर्च किया। तो उनके साथ में हमने काम करना चालू किया, समझा कि पोषण क्या इंपॉर्टेंस है। तो पता चला कि इंसान हो या जमीन हो, पौधे हो, जानवर हो, सबके अंदर पोषण का बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इंटरलिंक होता है। और चाहे बीमारियां हो चाहे स्वास्थ्य अच्छा हो, सबके पीछे कोई ना कोई पोषण का रोल है। तो जैसे पौधों के अंदर हम देख सकते हैं, ज्यादा अलग मैक्सिमम 70% बीमारियों के पीछे कोई ना कोई मूल कारण कोई ना कोई पोषण की कमी है। स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ, पोषण की कमी है। उसी तरह आप देख सकते जानवरों में भी अलग अलग पोषण की कमी की वजह से अलग अलग बीमारियां हैं, और उसी तरह इंसानों में भी। तो मूल कारण है पोषण, कोई ना कोई पोषण, पोषण यानी विटामिन, एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल, कोई ना कोई चीज की कमी से प्रॉब्लम चालू होता है और फिर वो बड़ा प्रॉब्लम बनता है। तो इसको सॉल्व अगर करना है तो सबसे पहले धरती पे काम करना पड़ेगा, धरती माँ को हम पोषण युक्त बनाना पड़ेगा। तो वहां से हमने जर्नी चालू की। तो इन साइंटिस्ट ने प्रकृति से ऐसे जीवाणुओं को आइडेंटिफाई किया जो कि पौधे को बहुत अच्छा मजबूत बनाता है। जैसे कि जंगल में तो हम कोई फर्टिलाइजर डालते नहीं है, लेकिन पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। बहुत से ऐसे ऐसे प्रकृति ने दिए हुए फंगस है, उसमें एक फंगस ऐसा है जो न्यूरोस्पोरा क्रासा नाम का, जो कि पौधे को रूट से लेकर शूट तक कंप्लीट डेवलपमेंट करता है। तो वहां पे उस पर उन्होंने काफी रिसर्च किया था, तो उनसे लेके हमने प्रोडक्ट बनाए। और इन प्रोडक्ट के साथ साथ बाकी सारे पोषण पे हमने काम किया। तो वो पोषण को भी ऐसा कि जो बायो चाहिए, कोई भी पोषण सिंथेटिक अगर रहेगा तो पौधा फसल लेने में उतना उसको इजी नहीं रहता, अच्छा नहीं रहा। लेकिन अगर कोई भी प्राकृतिक वे से तैयार किया हो, बायोचिलेशन हो उसके अंदर, तो फसल पोषण को अच्छी तरह से ग्रहण करता है। और हमने काफी रिसर्च किया नैनो टेक्नोलॉजी पे, माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट, जीवाणु से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, और वृक्ष आयुर्वेद बेस, वृक्षों से अलग अलग एक्सट्रैक्ट निकाल के प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे कि मृदा का स्वास्थ्य अच्छा हो, उससे फसल अच्छा हेल्दी आए, उससे आने वाला उत्पादन अच्छा हो और खाने वाले का स्वास्थ्य अच्छा हो। तो इसलिए हमारा टैगलाइन हमने बनाया, न्यूट्रिशन टू फार्म, नरिशमेंट टू पीपल। ये जो जर्नी है इतने कम पीरियड में, मतलब ऐसे तो परिवार 73 से व्यापार में है केमिकल्स फर्टिलाइजर्स के ओर के, लेकिन हमने 2000 में रिसर्च चालू किया और 2008 में जब हमको लगा कि सही प्रोडक्ट्स है जो कि किसानों तक पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में भेजा जा सकता है, तो मुंबई शिफ्ट होके हमने कंपनी चालू किया 2008 में जियो लाइफ के नाम से। 3 साल में 16 राज्यों में हिंदुस्तान में हमारी टीम नेटवर्क एस्टेब्लिश किया। आज हम 22 राज्यों में काम कर रहे हैं और 40 से ज्यादा देशों में किसानों को सेवा दे रहे हैं इतने कम समय के अंदर। हमने हमारा सब्सिडियरी यूरोप में बनाया, यूरोप में हमारी कंपनी खोली है, वहां पे टीम लिया है, जर्मन टीम, और स्पेन में और जर्मनी में हमारी टीम है, वहां के किसानों को पोषण की खेती के बारे में बताने के लिए। ये हमारी फैक्ट्री है पुणे में जेजुरी के पास, 12.5 एकड़ में वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री है। मैं कहां कहां कैसे कैसे करवाता है, जबकि मैं अकेला क्या कर सकता है, मेरी क्या अकेले की ताकत है। उन्होंने जो जोड़ा है, कहां से साइंटिस्ट जुड़े, कहां से लोग जुड़े, कहां से 3 लोगों का संगठन था, आज 650 लोग कंपनी में, इस लेवल में संगठन हमारा बनता गया। वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री है पुणे में, फुरसुंगी में रिसर्च सेंटर है 5.5 एकड़ का, जहां पे सारे स्ट्रीम के साइंटिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, सॉइल हेल्थ वाले सारे साइंटिस्ट है। कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, मल्टी लेवल स्क्रीनिंग होता है, इनविट्रो, वीवो, फील्ड ट्रायल्स होते हैं, मल्टी लोकेशन ट्रायल्स होते हैं, फिर कमर्शियल जाता है। तो इस लेवल का हमारा साइंटिस्ट का टीम हमने बनाया। कई यूनिवर्सिटी के साथ में टाइप किया। इंडिया में 8 अलग अलग मेजर क्लाइमेटिक जोन है, अलग अलग क्लाइमेट के जोन होते हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट 8 क्लाइमेटिक जोन में काम करेगा तो विश्व में कहीं भी करेगा। उसके हिसाब से हमने कई यूनिवर्सिटीज में, रिसर्च सेंटर्स में हमारे प्रोडक्ट्स के ट्रायल्स करवा के डेटा जनरेट किया। ये सबके पीछे रीजन क्या है, ये हमको यहां से मिला। हमको हमारी कंपनी जब फॉर्म किया, बनाया, तो हमारे कंपनी के कोर वैल्यूज को डिजाइन करने में ब्रह्म कुमारी से हमको नॉलेज मिला कि क्या होना चाहिए एक संस्था के कोर वैल्यूज। उसमें कई है, लेकिन व्यापार के हिसाब से अगर किसी भी संगठन के हिसाब से देखा जाए तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कर्म सिद्धांत, हमारी कंपनी को हमने स्टार्ट से एंड तक पूरा कर्म सिद्धांत के ऊपर चलने के लिए बनाया। सारी टीम को पर्सनली मैं ट्रेनिंग देता हूं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बाकी 800 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, सीएफओ से सीईओ से बिजनेस करने वाले बहुत है, लेकिन कर्म सिद्धांत सिखाने के लिए, वैल्यू सिखाने इतना इंपॉर्टेंस है कि मैं नीचे तक पूरी टीम तक जाता हूं, पूरे 22 राज्यों में, पूरे वर्ल्ड में, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। गलत तरीके से कमा के पैसा किसी कंडीशन में नहीं लाना है, झूठ बोल के, चोरी करके, धोखा देके, किसी को तकलीफ देके, करप्शन करके, ऐसा पैसा कभी नहीं फलता। अगर वैसा पैसा हम लाएंगे, खाने पीने में लगाएंगे तो स्वास्थ्य खराब होगा, घर पे लगाएंगे तो परिवार में सुख शांति नहीं रहेगा, बच्चों पे लगाएंगे तो बच्चे जीवन में जितना सक्सेस होना है उतना नहीं होंगे, किसी व्यापार में लगाएंगे वो व्यापार आज नहीं कल कभी ना कभी डूब जाएगा। ये चाहे कंपनी के लिए हो चाहे किसान का संगठन हो, हर जगह पे ये लागू होता है। हम हमारे मूल्यों के साथ काम करेंगे, हमारा भी भला हो साथ में सबका भला हो ये सोच के काम करेंगे तो हमको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। हर पल ऐसा लगता है अरे ये कैसे हो गए, हम तो सोच ही रहे थे, कोई ना कोई आके मिलता है, जहां जाते हैं वहां पे कोई ना कोई आके मिलता है, उंगली पकड़ के ले जाता है। बाबा परमात्मा ऐसे लोगों से जोड़ा है लाइफ में, उदाहरण बोलते गए तो 10 घंटे कंटिन्यू बोल सकते हैं, इतने स्टोरीज है हमारे साथ में जो हुआ है। तो कोर वैल्यूज हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में एक और हुआ, हमने पोषण की खेती में बहुत रिसर्च किया, हमको लगा कि हमने बहुत अचीव किया। यहां पे आए थे एक बार हम एग्रीकल्चर विंग की कॉन्फ्रेंस में अमेरिका से 7-8 साल पहले, यहां पे कुछ और सिखाया गया, शाश्वत योगी खेती। अब हम पोषण पोषण बोलते हैं तो यहां पे पता चला कि सही पोषण क्या है। सही पोषण यानी सही न्यूट्रिशन के साथ में सही विचार, ये नई चीज हम सुनने को मिली। अरे विचार भी कैसे काम करता है, हमको बताया गया कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिलेगी तभी सक्सेस मिलेगा। चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी जॉब में हो, चाहे खेती कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, विज्ञान और आध्यात्मिक अगर दोनों साथ में चलेगा, अध्यात्म, तभी हमको ऑप्टिमम लेवल पे सक्सेस मिलेगा, उसका पता चलेगा। और स्पिरिचुअलिटी का मायने हमको उस टाइम पे पता चला। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, मैं और मेरी की स्थिति से सब कुछ तेरा, उस स्थिति में जाना, भाई सब जो भी कर रहा है करा रहा है वही है, सब तेरा ही है, हम तो खाली करवा रहे, हमारे द्वारा कार्य करता है। अगर ये सोच जब आएगी तो परमात्मा हमारी उंगली पकड़ के हमारे साथ चलेगा, ये हमने अनुभव किया। यहां पे हमको बताया गया योगी खेती में क्या क्या होता है, बीज से लेके हर स्टेज पे परमात्मा को याद करके, परमात्मा का आह्वान करके उनकी शक्ति को खेत में देना है। अच्छा लगा, अरे तो बहुत अच्छी चीज है, इसको साइंटिफिकली कुछ करके देखना चाहिए, ये हमको संकल्प आया। फिर हमने और देखा कि ऐसे खाली पूजा और भी नहीं होती, खेतों में जब लोग पहले खेती करते थे तो उनके विचार भी कैसे होते थे, पॉजिटिव होते थे, कैसे होते थे। उदाहरण के तौर पे जैसे प्लांटेशन कर रहे हैं उस टाइम पे क्या विचार होते थे, तो ऐसे विचार होते थे। मैं आगे फास्ट जाता हूँ कि पहले ऐसे विचार रह के खेत में करते थे, हर एरिया में अपने एरिया के लोकल गीत गाते थे कि सबका अच्छा होगा, तो प्रकृति भी साथ देती थी। बाद में ऑटोमेशन आया, कनेक्शन टूटा, लेकिन अभी योगी खेती के द्वारा वो कनेक्शन फिर से जोड़ा जा सकता है। तो हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, हमारे रिसर्च फार्म पे टीम को बोला कि आप करके देखो रिसर्च कि कैसे होता है। पहले तो मान नहीं रहे थे, साइंटिस्ट लोग थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन उन्होंने माने, हमने वहां पे करवाया। पूना जगदम्बा भवन से हमको सपोर्ट मिला, बीज को, न्यूट्रिशन को, सबको योग के द्वारा चार्ज किया और देखा कि जर्मिनेशन और बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा यील्ड आया। तो किसान, हमारी टीम को लगा कि अच्छा तो, लेकिन हमको फिर से करके देखना है। तो उन्होंने फिर से अलग अलग ट्रायल्स करके देखे, वहां पे 19% यील्ड ज्यादा आया, बाकी सारे पैरामीटर सेम थे, 19% यील्ड ज्यादा आया। फिर हमको बोला गया कि सिर्फ फसल में ही नहीं, आपके पैकिंग किए हुए प्रोडक्ट के अंदर भी परमात्मा की एनर्जी आ सकती है, जिसमें 1 रुपया का भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। अब तो बिजनेसमैन है तो बगैर खर्चे का अगर कुछ अच्छा होता है तो करके देखना चाहिए। तो हमने किया, तो सेम पैकिंग में से प्रोडक्ट्स को लेके वहां पे भिजाया जगदम्बा भवन, और वहां पे चार्ज किया गया और ट्रायल्स किए। आप चाहे तो मैं शेयर कर दूंगा इसको, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रॉप में ट्रायल किए, हर जगह बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए। नॉर्मल प्रोडक्ट से पॉजिटिव एनर्जी डाले हुए प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए। कई ट्रायल्स किए, फिर सबको विश्वास हुआ कि ये काम करता है। फिर हमने सोचा कि इस सिस्टम को पूरे नई प्रोडक्शन में, पूरे प्रोसेस में लाना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के संस्था में, टीम में। तो हमने फैक्ट्री में ब्रह्म कुमारी इसकी टीम को बुलवा के वहां पे सारी टीम को फैक्ट्री में स्टाफ को सबको योग सिखाया, राजयोगा। आज हमारी फैक्ट्री में हर दिन राजयोगा होता है, शुरू में मेडिटेशन करके काम चालू होता है और प्रोडक्ट के अंदर परमात्मा का वास करके वो एनर्जी डाल के हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। फिर बाद में हमने हमारे ऑल इंडिया टीम को भी हर जगह पे बाबा से परिचय करवाया, अलग अलग जगह पे लोकल सेंटर से आते थे। किसानों की फार्मर मीटिंग ऑल इंडिया में हर दिन होती है तो वहां पे लोकल सेंटर से दीदियां भाई जी आते हैं और किसानों को सिखाते हैं। प्रयास किए हमने, हमारी टीम का सबका राजयोगा हुआ, कम से कम 200 लोगों का राजयोगा कोर्स हमारी टीम में हमने करवाया अभी तक। और एक कोर्स हमारी शिवानी दीदी ने स्पेशल लिया हमारी कंपनी के टीम के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ये पोषण युक्त विश्वमुख सात्विक अन्न लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो वैसे लोगों को मोटिवेशन मिला, हमारी टीम को सेंटर्स में लेके जाते हैं, यही नहीं फॉरेन में जैसे हम जाते हैं, अभी स्पेन में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोकल में कहां सेंटर नजदीक है, उनको ले जाके उनका परिचय करवाते हैं वहां पे। तो स्पेन के डिस्ट्रीब्यूटर ने किया, बाद में उनकी फैमिली के साथ गए, आज वो बाबा के बच्चे बन गए। वैसे कई देशों में हमारे जो टीम है वो लोग बाबा के बच्चे बने हैं। हमारी फैमिली को भी अभी हम लोग लंदन गए थे तो जयंती दीदी के पास मिलवाए थे ले जाके सबको। और ये आज जो पद्धति हमने बाबा ने सिखाई है पोषण की खेती के, जिसमें अत्यधिक उत्पादन के साथ में पोषण युक्त विश्वमुक्त और सात्विक अन्न भी उगा रहे हैं। सात्विकता के बारे में दो दिन से बात चली रही है, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, मतलब पॉजिटिव एनर्जी जो डालना है इसके अंदर, हमने इसके ऊपर कई रिसर्च किया है। एक चीज बताना चाहूंगा कि आज एक एकड़ में खेती करने के लिए हजारों लाखों कीड़ों की हत्या करनी पड़ रही है जहर की खेती की वजह से। तो सोचिए उतने कीड़े जब मर रहे हैं तड़प तड़प के, जो वाइब्रेशन है उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ, उनका दर्द, वो भी पौधा ग्रहण कर रहा है और अनाज के द्वारा वो आ रहा है। तो उस चीज को रोकने के लिए हमको जितनी भी अच्छी पद्धतियां है जो विषमुक्त खेती और बिना हिंसा किए हुए खेती कर सकते हैं उसको हमको करना है, जो कि हमारी कंपनी कर रही है। और पोषण की खेती में सबसे बेस्ट यही है कि पुरानी जो पद्धतियां हमारी सनातन पद्धतियां हैं उसके अंदर सारा पोषण मिलता था। आज हम जो भी केमिकल डाल के कर रहे हैं, यूरिया डीएपी में लिमिटेड न्यूट्रिशन मिलेगा, सब चीज बैलेंस मिल ही नहीं सकता। तो उन पद्धतियों को वापस से लाना है लेकिन आधुनिक तरीके से। हम वापस 100 साल पीछे नहीं जा सकते लेकिन उन पद्धतियों को लेके आज के जमाने में उसको कैसे कर सकते हैं। अकेला किसान के लिए बहुत टाइम लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर संगठन के द्वारा ये काम होगा तो इन पद्धतियों को बहुत अच्छी तरह से हम ला सकते हैं और हमारी आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए विषमुक्त अन्न हम सकते हैं। ये सब आप सब लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं तो इस चीज में करना है और सनातन कृषि संस्कृति के द्वारा स्वराज हम लाएंगे सब मिलकर। परमात्मा सबको खुश रखे, सब ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई जी को, जिन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से शॉर्ट एंड स्वीट पूरा हम सबको समझाने का प्रयास किया है। इसके पश्चात हमारे बीच ब्रह्मा कुमार कृषि भूषण भगवान भाई जी आए हुए हैं, जो कि नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं। आप पिछले 25 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज में ईश्वरीय विश्वविद्यार्थी के रूप में अपना अभ्यास करते हैं और उसका प्रयोग अपने जीवन काल में करते हैं। आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, जैसे कृषि मित्र ग्राम मालेगांव में आप चालक हैं, शेतकरी मित्र फार्मर प्रोड्यूसर किसान उत्पादक कंपनी नांदेड़ में, और आप विकेल ते पिकेल अभियान माना करो तो पाओ इस अभियान में महाराष्ट्र शासन के किसान प्रतिनिधि हैं। आप मास्टर ट्रेनर हैं राष्ट्रीय प्राकृतिक नैसर्गिक खेती अभियान भारत सरकार के। आपको विभिन्न जी मिले हुए हैं जिसमें जिला परिषद नांदेड़ की ओर से कृषि निष्ठ पुरस्कार 2009 में, महाराष्ट्र शासन का कृषि भूषण पुरस्कार 2019 में, जीवन गौरव पुरस्कार, अग्रोवन कृषि समाचार पत्र की ओर से स्मार्ट युवा किसान पुरस्कार, और आपने विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किए हैं, आपने अपनी 15 एकड़ खेती पर गौ आधारित शाश्वत यौगिक खेती का मॉडल बनाया हुआ है। आपने किसानों को शाश्वत यौगिक खेती पद्धति के विषय में जागृत करने तथा प्रशिक्षण देने की सेवाएं महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में दी हैं। आपने शेतकरी मित्र किसान उत्पादक कंपनी के माध्यम से कृषि औजार बैंक की स्थापना की, प्राकृतिक आपत्ति के समय जरूरतमंद किसानों को दिलाने के लिए ट्रैक्टर हमारा डीजल आपका योजना बनाकर चलाई, कंपनी के माध्यम से किसानों के लिए बियर हाउस ग्रीडिंग क्लीनिंग यूनिट है। विभिन्न प्रशिक्षण जैसे कृषि निविष्ठाएं अपनी खेती पर बनाना, बीज प्रक्रिया, कृषि उपज का ग्रेंडिंग, पैकिंग, विपणन आदि का प्रशिक्षण देकर सेंद्रीय खेती को बढ़ावा देने की सेवाएं दी। कंपनी की गतिविधियों से लगभग 2000 किसान लाभान्वित होते हैं। शेतकरी मित्र किसान उत्पादक कंपनी को वैश्विक स्तर पर जैविक उत्पादन बेचने के लिए अपेड़ा मना एनपीओपी कंपनी में 100 किसानों को कलेक्टर से जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। आपकी खेती की यौगिक ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर स्थानीय सांसद के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के किचन तक पहुंचती है। महाराष्ट्र शासन की ओर से आपको आधुनिक कृषि तंत्र ज्ञान का अभ्यास करने के लिए विदेश यूरोप यात्रा के लिए किसान प्रतिनिधि के रूप में चयनित किया गया है। आपका कार्य अनेक युवाओं तथा किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो अभी हम आमंत्रित कर रहे हैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई जी को।
ओम शांति। सम्माननीय मंच पर विराजमान अतिथिगण और यहाँ परिसर में सभागार में बैठे हुए सभी कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि किसानों के हल के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन किसानों को ही बोलने का मौका नहीं दिया जाता। बैठते सभी है, अभी महाराष्ट्र में मानसून पूर्व बैठकों का आयोजन हो रहा है और जो बांध पर खेती करने वाले किसानों की समस्या का हल करने के लिए किसानों को ही प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। लेकिन मैं यहाँ 4 दिन से देख रहा हूँ, हर सेशन में किसान एक प्रतिनिधि स्वरूप में उनको जगह दी है, इसलिए मैं आयोजकों का दिल से धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो बचपन से लेकर स्कूल में ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है, जो थोड़ा स्कूल में कच्चे रहते हैं, तो हम ही उनको सिखाते हैं कि भाई तू अच्छा पढ़, नहीं तो खेती में जाना पड़ेगा, जानवर चराने पड़ेंगे। माना बचपन से ठूस ठूस के भरा है कि जो अच्छे होशियार नहीं होते, पढ़ाई नहीं करते, स्कूल में नहीं जाते, तो उन्हें खेती में जाना पड़ेगा, और ये हमारे ऊपर भी पड़ा और उसी का एक मैं प्राणी हूं कि मुझे मजबूरन खेती में आना पड़ा, क्योंकि खेती सबको अच्छी लगती है लेकिन खेती करना कोई नहीं चाहता। यहाँ पर बैठे हुए सभी वैज्ञानिक है, सभी है, इनसे पूछा जाए कि आपके परिवार में से कितने ऐसे जो किसान बनना चाहते। किसान का बेटा खुद किसान नहीं बनना चाहता, ये हकीकत है। वकील का बेटा वकील बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, राजनेता का बेटा राजनीतिक बनेगा, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। उत्तम खेती कहते हैं, मध्यम व्यापार कहते हैं, कनिष्ठ नौकरी करते हैं, और आज जो उत्तम खेती है वो सबसे कनिष्ठ हो गई, इसके जिम्मेदार कौन है? बचपन से लेकर ज्यादा उत्पादन बढ़ाओ, ज्यादा उत्पादन बढ़ाओ, ये हमने ठूस ठूस के भरा, हमने बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ाया, उत्पादन देश का बढ़ता, सबको पेट पर खाना मिल गया, लेकिन किसान का उत्पन्न घट गया। उत्पादन बढ़ा दिया, उत्पन्न किसान का घट गया, और ये अंदर बहुत तकलीफ होने लगी, किसान ने क्या पाप किया। अन्नदाता किसान सभी को कहते हैं, सभी किसान ये करना चाहते हैं, लेकिन किसान ने क्या पाप किया जो आज किसान इतना मजबूर है, जो सुसाइड की तरफ जा रहा है, जो परेशान है। तो इस परेशानी का हाल जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और जो मैं खूब बेरोजगार बनकर खेती छोड़कर शहर में नौकरी के लिए जा रहा था, वहां पर भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, फिर वापस भेज दिया जॉब गांव में। सब रास्ते बंद थे, सब कर्जा बढ़ गया था, कुछ करने की दिशा नहीं थी, लेकिन परमात्मा की दृष्टि पड़ी और बहन जी की दृष्टि हमारे के ऊपर पड़ी, और उन्होंने ये शाश्वत युग की खेती करने की ट्रेनिंग के लिए हमें माउंट आबू भेजा। मेरा विश्वास नहीं था, लेकिन बहन जी की आज्ञा समझकर, परमात्मा का संदेश समझकर मैं योगी खेती ट्रेनिंग के लिए माउंट आबू आया। यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद मुझे वो आंसर का, किसान ने क्या पाप किया है, तो यहाँ पर मुझे उत्तर मिला कि किसान ने कष्ट मेहनत बहुत की, भारत के किसान ने कष्ट मेहनत में कोई कमी नहीं की, लेकिन कष्ट मेहनत के साथ किसान ने ज्ञान को नहीं जोड़ा। वो ज्ञान मुझे यहां मिला। अपने खेती में क्या उगता है ये न सोचकर मार्केट में क्या बेचा जाता है ये सोचकर हमें खेती करनी चाहिए। खेती का विज्ञान कौन है? प्रकृतिपति परमात्मा से आशीर्वाद लेकर उनको याद कर पांच तत्वों की रक्षा कैसे की जाए, और ये रक्षा कर अगर खेती की जाए और वह माल अगर हम बाजार में जाए तो खेती का अच्छे दिन आ सकते आए हैं। तो इसका अनुकरण कर जब हम गांव में गए योगी खेती के सीखकर, हमने अपने खेती पर सबसे पहले खेती के लिए जरूरत होती है जो अपनी गौ माता है उसको रखा, और जो बाहर की विदेशी गाय उसको बाहर निकाल दिया। खेती के लिए यहाँ पर जो हमें सिखाया गया है कि यहाँ से जो मंत्र मिला है कि खेती में से कुछ भी अगर निकलता है उसको जलाया नहीं जाना चाहिए, हमने जलाया नहीं है। गाय के गौमूत्र से गोबर से अपने खाद पर मेड़ पर खाद बनाए, वहां मेडिटेशन रूम बनाया, अपने खेती के ऊपर शिव बाबा का ध्वज लहराया, जमीन की पूजा की, हल्की पूजा की, हमारा उत्पादन अच्छा आया, खेती अच्छी आने लगी। और ऐसे ही कपास की खेती में जब अच्छा उत्पादन आया तो एक सभा में मैंने कहा कि कोई भी आकर हमने अपने बांध पर ये शाश्वत योगी खेती के मॉडल से ये जो फसल का उत्पादन लिया है और ये कपास के ऊपर से कोई भी एक इल्ली निकाले और 1 रुपए इनाम के तौर पर पाए, ओपन चैलेंज कर दिया। अगले दिन कृषि विद्यापीठ परभनी के अधिकारी कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने बारकाई से अवलोकन किया तो हमारे फसल में से कपास की फसल में से एक भी इल्ली उनको चुनकर नहीं मिली, एक भी इल्ली। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें कंपनी को सेंद्रीय कृषि भूषण अवार्ड दिया। ऐसे हमने एक कंपनी बनाई, कंपनी के माध्यम से हमने 2000 किसानों का संगठन बनाया है, और ये संगठन के माध्यम से हमने 100 किसानों को ऑर्गेनिक प्रमाणीकरण किया, और किसानों का जो उत्पादन होता है उसका हम बाहर भी निर्यात करते हैं। सबसे पहले हम किसानों को संगठन बनाने के बाद अपने बाजार भाव की माहिती देते हैं, उसका भाव क्या है। किसानों का जो भी माल हमारे कंपनी में तरफ आता है तो हम उनसे कोई भी कमीशन नहीं लेते। और आज किसान एक के 100 दाना करता है, लेकिन 100 एक रुपए से 100 रुपए करना नहीं सीखता। और वो कैसे है, वो हम कंपनी के माध्यम से जो किसानों का उत्पादित किया हुआ माल है उससे वैल्यू एडिशन कर, हमने जो सामने आपके प्रोडक्ट रखे, ये जो हल्दी है, मोरिंगा पाउडर है, गुड़ है, जो हल्दी मार्केट में 10-15 हजार क्विंटल बिकती है उसका वैल्यू एडिशन कर जब हम बाहर देशों में अपने देश में सब तरफ देते हैं तो उसकी वैल्यू एडिशन बढ़कर हमें लगभग 300 रुपए पर केजी कीमत मिलती है। ये जो मोरिंगा पाउडर है, अभी सबको प्रॉब्लम हो रहे जॉइंट पेन के, जो बांध पर अगर हम मेड़ पर लगाते हैं तो बांध बहकर नहीं जाता, और वो मेडिकल स्टोर पर रखने के बाद अगर वो मोरिंगा पाउडर का हम यूज करेंगे तो हमें कोई भी जॉइंट पेन नहीं होगा, शुगर कम होगी, हमारे आरोग्य के बहुत से प्रॉब्लम हल होते हैं। कहने का मतलब एक ही है कि हमने कंपनी के माध्यम से जो शुरुआत की है, अपने प्रोसीजर कर अपने मूल्य की वैल्यू एडिशन की है, उससे हमें किसानों को हर क्विंटल का 1000-1500 रुपए ज्यादा देने का भाग्य पहुंचा है, हम देते हैं किसानों को। तो मेरा यही कहना है कि आप संगठन में आकर अगर संगठन को बढ़ाना है, संगठन को इकट्ठा करना, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी अभी स्कीम है वो एक दूसरे को नहीं मिलने वाली है, संगठन बनाना पड़ेगा। और संगठन के लिए जो मूल्य चाहिए, मूल्य हमें यहाँ मिलते हैं, इससे हमारा संगठन बढ़ता है। तो टाइम ज्यादा हो रहा है तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप ये शाश्वत योगी खेती करना शुरू कीजिए, संगठन बनाइए, और इस संगठन के माध्यम से इसका उत्पादन बढ़ता है। ऑथोराइज के साथ, ऑथोराइज हम कह सकते हैं, अभी आपके सामने मैं एक रिपोर्ट दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र में परभणी कृषि विद्यापीठ है, वहां पर जो 3 साल का एक MOU हुआ है विद्यापीठ के साथ, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक और प्लस योगी का जो प्रयोग किया है उसमें पर हेक्टर 17 क्विंटल 73 किलो चने का उत्पादन हुआ है, जो ऑर्गेनिक केमिकल उनसे भी ज्यादा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज भी बढ़ी है, और ये ऑथोराइज पब्लिक अभी डाटा भी उसका शेयर हो जाएगा। तो इसके लिए परभणी कृषि विद्यापीठ के हमारे वाइस चांसलर जो डॉक्टर इंद्रमणि जी वो यहाँ आकर होकर गए, और ये एमयू करने में जिनकी हमें मदद मिली, हमारी संचालिका आदरणीय सुनंदा दीदी,
अर्चना दीदी और रोडगे भाई, तांदेड़ भाई, इन सभी का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। और आप सभी को जो हमारा शाश्वत योगी खेती का मॉडल है वो देखने के लिए निमंत्रण देता हूँ कि आप महाराष्ट्र में आइए और योगी खेती का मॉडल बनाइए। जैसे मेरे जैसे किसानों को ये संस्था ने खड़ा किया और हजारों किसानों को मैं नैसर्गिक खेती की ट्रेनिंग देता हूँ, उनका माल बेचता हूँ। तो आप सभी को आपका एक कर्तव्य है कि हमारे जैसे किसानों को इकट्ठा करें और खाली किसानों से माल खरीद कर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है तो हमें खुद ऑर्गेनिक माल को खाना पड़ेगा, उनसे लेना पड़ेगा। डॉक्टर के पास न जाकर हम किसान के पास जाए और किसान से माल खरीदी करें तब किसान इस तरफ आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई कृषि भूषण जी को। इसके पश्चात हमारे बीच में भ्राता एस बी चौधरी जी, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर सुमूल अमूल ग्रुप सूरत से आए हुए हैं। आपसे भी अनुरोध करूंगी अपनी शुभकामनाएं हम सबके समक्ष रखेंगे। भ्राता एस बी चौधरी जी
नमस्कार। सनातन कृषि संस्कृति द्वारा ग्राम स्वराज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत भाई और बहनों, पहले से ही समय का अभाव है तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ दो मिनट में ही मेरा वक्तव्य खत्म करूंगा। वास्तव में दीदी जी मैं तो सिर्फ सुनने के लिए आया था, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आज परम कृपाणु परमात्मा के आशीर्वाद की वजह से इस मंच पे मैं आप तक पहुंच ही गया। 2011-12 में जयपुर में मैं जाया करता था और उस टाइम एक बीज अंकुरित हुआ था, लेकिन उसको पकने में लगता है कि शायद फर्टिलाइजर की कमी थी, कहीं पानी की कमी थी, कोई संस्कार की कमी थी, तो इस मंच तक पहुंचते पहुंचते आज 12-13 साल हो गए। काफी उच्च पदों पर रहने का मौका मिला, काम किया। बातें करने अगर लगे तो बहुत सारे विषय हैं और काफी समय लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट में इतना ही बताऊंगा कि जिस विषय को लेकर के हम यहां उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले आते ही हमने तपोवन की मुलाकात करी। हमारे अशोक भाई जी ने पहले ही हमें तपोवन दिखा दिया। तो इस पूरे कार्यक्रम का जो अगर कोई महत्व की बात है और कोई अगर भूमिका है तो वो है आपका तपोवन। तपोवन अगर देख लिया तो सारी समस्याएं जो भी हैं हमारे मन में वो वहीं से ही क्लियर हो जाती हैं, और बाद में तो हम यहां ये ज्ञान सागर में ही आ गए कि यहां से ही मतलब ये 3 दिन से ज्ञान ही ज्ञान मिलता जा रहा है। लगता है कि इसकी बहुत कमी थी और बहुत ही पहले आने की यहां पर जरूरत थी। गाय आधारित खेती और उसको लेकर के काफी बातें हुई हैं। डेयरी का बंदा रहा हूं तो काफी स्टेट में मैंने काम किया है, और इतना ही कहूंगा कि आजकल मार्केट में आप A1 और A2 दूध पीते हो, और बहुत सारे लोग बताते होंगे कि A2 दूध सही है, लेकिन वास्तव में A1 और A2 क्या है? तो ये बीटा केसिन जो प्रोटीन है उसी का ही फर्क है, और A2 प्रोटीन, बीटा केसिन प्रोटीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी देशी गाय में है, चाहे वो कांकरेज हो, चाहे वो हमारी गीर हो, चाहे वो हमारी राठी ब्रीड हो। और आप सबको पता होगा कि ये सारी की सारी जो बातें हो रही हैं तो गाय और खेती, गाय आधारित खेती को लेकर के ही ये बातें हो रही है। तो हमारा पशु और हमारी खेती एक दूसरे के पूरक है। हम अगर देसी गाय पाल लेंगे हमारे खेतों में, उसको रख लेंगे, तो उसी का ही गोबर और उसी का ही मल मूत्र जो भी है वो हमारे लिए काम आएगा। शॉर्ट में कहूंगा कि जिस दिन मतलब सारे 33 करोड़ देवताओं का बंटवारा हो रहा था गाय के शरीर में, तब लक्ष्मी माता रह गई, और लक्ष्मी माता ने जब गाय से याचना करी कि मुझे भी कहीं तेरे में समावेश कर लें, तो लक्ष्मी माता ने बोला कि एक ही जगह बची है और वो है मेरा मल और मूत्र, अगर तुम्हें रहना है तो उसी में रहो। तो लक्ष्मी जी ने वो स्वीकार कर लिया और उसी में अपना वास कर लिया। वही गोबर वही मूत्र अगर हम हमारे वहां यूज करेंगे तो इससे बड़ा कोई सोना नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इस विषय को लेकर के हम काफी सेंसिटिव बने, और मेरी ये गुजारिश है दीदी जी आपको कि हमारे वहां मेहसाना में, खेरालू में, उत्तर गुजरात की तरफ कोई ऐसा फार्म, मॉडर्न फार्म नहीं है। मैं वहां पर जमीन और इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हूं, आप हमारा सहयोग बढ़ाएं, आपकी तरफ से जो भी हमें सहयोग मिलेगा उसको लेकर के एक मॉडर्न फार्म बनाएं, ताकि वहीं पर नजदीक में लोग इससे सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई चौधरी जी का। इसके पश्चात हम सभी अभी कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमारे बीच में आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सुनंदा दीदी जी हैं, जो कि ग्राम विकास प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। एक दिन की नहीं, दो दिन की नहीं, ये बात नहीं कल परसों की है, कर रहे खुद को समर्पण, ये समर्पण की सेवा है 43 से ज्यादा वर्षों की, आदरणीय सुनंदा दीदी जी। ओम शांति। इस विश्व के अंदर सत्य ज्ञान देकर के, सहज राजयोग की शिक्षा देकर के, सारे ही संसार में वापस एक विश्व बनाने का कर्तव्य जो परमात्मा कर रहे हैं, वो ईश्वर पिता और 1937 से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने 350 का संगठन शुरू किया और आज ये ब्रह्मा कुमारी का लाखों का संगठन हो गया है। इसी प्रकार साथ साथ मंच पर विराजमान राजाई के संस्कारों को धारण किए हुए हमारे राजेश भाई, छोटी आयु में ऋषि समान जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले महर्षि भाई, दाता के संस्कारों को धारण किए हुए डॉक्टर देव भाई, और आए थे कॉन्फ्रेंस में गेस्ट बन करके सुनने के लिए, लेकिन सुन करके धारण किया, और जो एक व्यक्ति थे आज जिन्होंने बहुत बड़ा संगठन किया, माना ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को, योग को प्रैक्टिकल में धारण किया, वो हमारे विनोद भाई, भगवान भाई और ऐसे ही चौधरी भाई जी को, साथ साथ आप सभी भाई बहन जो दो दिन से सुन रहे हैं, बहुत बड़ी सुनने की शक्ति को धारण किए हुए भाई बहन, आप भी यहाँ से जाकर के इन सारी बातों का अनुभव करना, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सुनने के साथ साथ करने का ज्ञान है, और जब व्यक्ति करता है तभी उसको हर प्रकार से अनुभव आता है। आज का जो टॉपिक है कि आत्मनिर्भरता के लिए मूल्यनिष्ठ किसान संगठन। संगठन क्या खाली किसानों को चाहिए क्या? एक घर में भी तो संगठन चाहिए, तभी उस घर में आनंद के साथ व्यक्ति रहता है। संगठन कोई संस्था हो उसमें भी चाहिए, आप जहां जॉब करते हो वहां भी संगठन चाहिए, और संगठन का अर्थ ही है एक संघ होना, जिससे टन जितनी शक्ति पैदा होती है, इसलिए संगठन का बहुत ही महत्व है। और समय के अभाव के कारण मैं आपको केवल एक छोटी कहानी सुनाऊंगी, और जो कहा है कि मूल्य निष्ठ, मूल्य मूल्य सब जगह चाहिए, पर्सनल लाइफ में चाहिए, पारिवारिक लाइफ में चाहिए, सामाजिक लाइफ में चाहिए, और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय मूल्यों का ही वापस, मूल्यों की जागृति कर रहा है। उसके लिए यहाँ पर एक छोटी सी साधना सिखाई जाती है, वो है राजयोग। आप बताओ मूल्य, संगठन के लिए मूल्य विश्वास चाहिए, स्नेह चाहिए, अपनेपन की भावना चाहिए, वो एक दो के साथ सच्चाई का व्यवहार चाहिए, सच्चाई चाहिए, सम्मान चाहिए, ये सारे मूल्य आप घर में भी रखो तो घर के अंदर भी यूनिटी आ जाती, आज हम किसानों की बात कर रहे हैं तो वहां पर यूनिटी आ जाती है। तो ये जो सारे मूल्य है, जिस मूल्यों के आधार से ही हमारा जीवन बड़ा सरल, सहज, सुंदर, शांतमय, शक्तिशाली, पॉजिटिव हो जाता है, एक का नहीं लाखों का, तो वो सारे जो मूल्य है वो कितने आसानी से राज्यों के द्वारा क्रियान्वित होते हैं, उसकी छोटी कहानी सुनाऊंगी और मैं समाप्त करूंगी। एक बार एक शिल्पकार मूर्ति बना रहा था। पत्थर था, छन्नी और हथौड़ी थी और वो ठोक ठोक करके मूर्ति बना रहा था। तो एक व्यक्ति वहां से पास होता है, वो व्यक्ति मूर्तिकार से पूछता है, क्या आप मूर्ति बना रहे हो? तो मूर्तिकार कहता, नहीं। अभी मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, लेकिन जब ना का उत्तर आया तो मूर्तिकार को वापस उस व्यक्ति ने प्रश्न किया, अरे तुम मूर्ति बना रहे हो ना? वो कहता है, नहीं। फिर तीसरी बार प्रश्न करता है। जब तीसरी बार प्रश्न करता है, अभी समय होता तो मैं आपको भी पूछती, तो तीसरी बारी भी मूर्तिकार कहता है, नहीं। तो उसने जवाब दिया, देखो भैया, मूर्ति इस पत्थर में है ही, मैं केवल छन्नी और हथौड़ी से जो भाग हिस्सा पार्ट नहीं चाहिए वो ठोक ठोक करके निकाल रहा। मूर्ति इसमें है ही। मेरे प्यारे आत्मिक भाई और बहनों, सारे मूल्य, चाहे शांति हो, आत्मविश्वास हो, संगठन हो, प्यार हो, निर्भयता हो, निश्चिंतता हो, सारे मूल्य इधर है। इसलिए आत्मनिर्भर बोला ना, आत्म आत्मा इधर है, लेकिन हम इसको ही भूल गए हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर परमपिता परमात्मा जो है, जो आत्माओं के लिए, मनुष्यों के लिए मूर्तिकार है, वो ज्ञान और योग की छन्नी और हथौड़ा लेकर के रोज ऐसे करता है, और जो करके लेते हैं उनके अंदर मूर्ति तैयार हो जाती है। तो मैं यही कहूंगी, आप सभी भी ऐसी चैतन्य मूर्ति बनिए, और किसानों का संगठन तो हो ही जाएगा, लेकिन आप अपने लिए और भारत देश के लिए ज्ञान और योग का आधार लेकर के स्वयं को चैतन्य मूर्ति बनाइए। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी को, जिन्होंने बहुत सुंदर आपको लास्ट में एक शब्द दे दिया कि सारा कुछ यहाँ पर है, खुद को हमें जो वेस्ट है वो निकालना है। और अंत में दो शब्द आप सबके लिए कहना चाहूंगी कि इंसान इंसान के लिए जिए, ये ताना बाना तो सबने बुना है। इंसान इंसान के लिए जिए, ये ताना बाना तो सबने बुना है। जो संसार के लिए जिए ये बहुत कम सुना है। धन्य है आप सभी महान आत्माएं जो आपने खुद को भगवान के घर आने को चुना है, और घर आने को ही नहीं, भगवान को अपना बनाने के लिए आपने स्वयं को चुना है। इसलिए एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।